इस प्रातः यहाँ आकर बहुत प्रसन्न हूँ और इस मंच पर आते हुए इस प्रोत्साहन को सुनकर देरी होने के लिए खेद है, परंतु वहाँ पीछे कारों, चिकित्सा वाहनों में बीमार और मुझे उनको पकड़ना था जो यहाँ अंदर नहीं आ सकते थे, आप समझे, इससे पहले कि मैं अंदर आऊँ। अब मुझे आश्चर्य है, यदि उस बहन के पास वो छोटा बालक था, यदि वो दोपहर बाद वापस नहीं आ सकती है, यदि प्रभु ने चाहा तो मैं आज सांझ को भी प्रचार करना चाहता हूँ। यदि वो समर्पण के लिए वापस नहीं आ सकती है, जबकि इस बार मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, ठीक है, उसे बता दें कि वो बालक को अब ला सकती है, परंतु यदि वो आज रात्रि वापस आ सकती है तो ये हमारे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, परंतु वो जैसा चाहे कर सकती है, इसका जो भी अर्थ हो, यदि वो वापस नहीं आ सकती है, हम उस छोटे बालक को भी ले आएंगे समर्पण के लिए। और अब ये सब जबकि मैं बोल रहा हूँ, यदि वो अभी आना चाहती है और ये समय होगा, अब आज रात्रि एक बहुत ही विशेष, आज रात्रि मैं एक विषय पर बोलना चाहता हूँ। श्रीमान, क्या यही समय है? एक भविष्यद्वक्ता वाला संदेश। इसलिए यदि प्रभु ने चाहा तो आज रात्रि मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूँ। क्या यही समय है श्रीमान? या बल्कि श्रीमान, क्या यही समय है? और तब मैं कलीसिया की उपस्थिति में ये अवसर लेना चाहता हूँ, जो कि इन अंत के दिनों में बहुत सी चीजें घटित हुई हैं, जो कि किसी महान चीज की ओर संकेत कर रही हैं, जो कि मैं नहीं समझता, परंतु हम सदा परमेश्वर के मार्ग समय व्यतीत होने के पश्चात मनुष्य द्वारा ढूंढे गए, इसलिए हम केवल विश्वास द्वारा चलते हैं। यदि कोई परमेश्वर की व्याख्या कर सकता होता तो फिर ये अवश्य नहीं होता कि विश्वास किया जाता, क्योंकि तब तो आप जानते ही होते, परंतु हम केवल विश्वास द्वारा चलते हैं। और आज प्रातः मैंने सोचा कि मैं साधारण सुसमाचार सुनाने वाली सभा को लेने का यत्न करूंगा, क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो मेरे विचार बदल गए और बहुतों को खड़े हुए देखा और बहुत देर से प्रतीक्षा करते हुए, और तब हो सकता है आज रात्रि को यहाँ थोड़ा है और तब मैं इसके साथ आगे बढ़ सकता हूँ, जो कि मैं कहना चाहता हूँ। जबकि हम में से बहुत से जमा हैं, आप में से बहुत से इकट्ठे हैं, मैं एक बात की घोषणा करना चाहता हूँ। ये कुछ है जो कि मैं पिछले कुछ सप्ताहों से मुझे रोक रही होगी, वो है टैक्स के विषय में आपकी प्रार्थना का उत्तर आया है, जो कि मेरा सरकार के साथ था, अब वो समाप्त हो गया है। जैसा कि आप में से बहुत से समझते हैं, उनके पास मेरे विरोध में क्या था, वे चेक जो बेदारी अभियान सभाओं के लिए तैयार किए गए थे, और तब भी वे ये कहना चाहते थे कि वो मेरे थे, और वे 350 कुछ हजार डॉलर मेरी व्यक्तिगत संपत्ति होने के नाते वसूल करना चाहते थे। और ये नहीं था, ये अभियान की सभाओं का नहीं था, और कलीसिया इस विषय में जानती है, आप सब इस विषय में जानते हैं। और अंत में वे ऐसी स्थिति में आ गए कि मैं आपको इसकी थोड़ी मोटी मोटी बातें बताऊंगा कि क्या हुआ। मुकदमे में उनके पास लगभग 3 से 5 वर्ष अवधि का मामला था, मैं समझता हूँ लगभग 5 वर्षों का, और आगे पीछे का और सारी संबंधित बातें, परंतु मैं बहुत ही आभारी हूँ कि वो मेरे विरुद्ध में कुछ भी नहीं पा सके, इसलिए इसके लिए वो मुझे दोषी नहीं ठहरा सके, इसलिए दोष लगाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, केवल उन्होंने ये कहा कि मैं अपने प्रति मेरी अज्ञानता मुझे लगता है, परंतु कानून के विषय में अधिक नहीं जानता। वे मेरे पास चेक लाते थे, उस पर मेरा नाम लिखते और मैं उन पर हस्ताक्षर करता था और उन्हें अभियान सभाओं में लगाते थे, परंतु जब तक मैं अपना नाम उस पर डालता हूँ वे मेरे थे, आप समझे, इसका कोई मतलब नहीं कि कहा ये बहुत अच्छा है कि आप उनको इस प्रकार से, परंतु वे आपके थे और तब आप उन्हें गिरजे को देते थे, परंतु जैसे ही आप उस पर अपना नाम लिखते थे तो वो आपका था, इससे कोई मतलब नहीं कि वो किस बात के लिए नामांकित थे, वे आपके लिए लिखे गए थे, इसलिए यदि वो लिखे गए होते, यदि कोई उस पर ये लिखता व्यक्तिगत दान तो ये ठीक होता, परंतु उन्हें केवल विनियम ब्रनम लिखा, समझे, और जब मैंने अपना नाम उस पर लिखा तो वो हो गया, यही सब कुछ इसका था, इसलिए वे। और अब अंत में प्रार्थना के साथ, और तब अधिक समय नहीं बीता, आप जानते हैं कि वे मुझे एक दर्शन मिला था कि एक बड़ा काला धुएंदार काले पोते हुए छिलकेदार मगरमच्छ की तरह एक मनुष्य मेरी ओर लोहे की उंगलियों के साथ बढ़ रहा है। मेरे पास एक ऐसा छोटा सा चाकू था और उसके ऊपर ये लिखा था संयुक्त राज्यों की सरकार, और मैं सहायता के लिए कुछ नहीं कर सका, मैं असहाय था, और तब प्रभु दृश्य में आया और वो जीत लिया गया था। और आपको याद होगा मैंने आपको बहुत पहले बताया था, और उन्होंने उस दिन मेल करने का प्रस्ताव रखा, और मेरे वकील श्री ऑर्बिसन न्यू अल्बनी में और आइस मिलर इंडियानापोलिस में मुझे टैक्स के मुकदमे के लिए बुलाया और मुझे बताया यहाँ आइए, और मैं गया भाई रॉबर्टसन और मैं और मेरी पत्नी और यहाँ के गिरजे के ट्रस्टी और हम सब वहाँ गए और उन्होंने हमें बताया कि वे सरकार मेल करने की इच्छुक है। और मैंने कहा मैं यदि मुझ पर किसी का कुछ आता है तो मैं दूंगा, परंतु मैंने अच्छा से अच्छा किया, परंतु मैंने कहा मैं इसका ऋणी नहीं हूँ और इसलिए मैंने कहा मैं इसका ईमानदारी से परमेश्वर जानता है। और उन्होंने क्यों नहीं मुझे दोषी ठहराया यदि मैं दोषी हूँ? मैंने कहा इस विवाद को करने के लिए उनके पास 5 वर्ष थे, परंतु वे इसे करने में कुछ नहीं पा सके, इसलिए मैंने कहा नहीं, मैं इसका भुगतान तब तक नहीं करूँगा जब तक ये सिद्ध न हो जाए कि मैं इसका देनदार हूँ। और तब वकील मुझे अंदर ले गया और मुझसे बातचीत की और मुझसे कहा अब हम मुकदमे पर विचार कर सकते हैं, सरकार भी इस पर विचार कर सकती है। और कहा जब वे इसे करते हैं तो केवल एक बात वे आपके विरुद्ध ढूंढ सकते हैं कि आपने जो मैंने इस प्रकार से किया है, मैंने ये किया है, मैंने बस ये किया, मैं खातों वगैरह के विषय में कुछ नहीं जानता, इसलिए मुझे उसी प्रकार करना था जितना मैंने सोचा, ये ईमानदारी थी। और ये था और ये बैंक में कभी भी मेरे नाम में नहीं रखा गया, इसे बैंक में सदा गिरजे के अभियान के नाम में रखा गया और आदि आदि देखा, इसलिए ये कुछ नहीं था जिसके विषय में मैं कुछ कर सकता था। और मैं उसने कहा अच्छा, वे लोग $15,000 $10,000 जुर्माने के साथ मामले को समाप्त करने के इच्छुक हैं और वकील की फीस 15,000 थी और ये मेरे लिए 40,000 हो गए और तब इसलिए 5 और चाहते थे, मैं सोचता हूँ कि ये अब है, इसलिए मैं चाहता हूँ। मैंने कहा इस संसार में से मैं $40,000 कहाँ से लाऊंगा? मैंने कहा तुम जानते हो मेरा बैंक खाता यहाँ है, वो तो लगभग $100 या कुछ कम बताता है। मैंने कहा मैं $40,000 कहाँ से लाऊंगा? और मैंने कहा मेरे तो आसपास भी कुछ नहीं है, मेरे पास ये है ही नहीं बस। और उसने कहा भाई ब्रैनम, उसने कहा यहाँ केवल एक ही बात है, यदि हम मुकदमे में यत्न करें, उसने कहा इसमें कोई संदेह नहीं, केवल यही कि हम मुकदमा जीत सकते हैं। उसने कहा यहाँ इसके द्वारा हम जीत सकते हैं क्योंकि यही जो मैं करूँगा, वे आपको जो कुछ भी आपका है सबका दावा करने जा रहे हैं क्योंकि आपने उस पर अपने नाम के हस्ताक्षर किए हैं और वे इस बात का दावा करने जा रहे हैं कि ये आपका है, यदि वो खाते में अभियान गिरजे का ब्रैनम अभियान के नाम से है और तब एक कलीसिया। और एक बार भी वे ये नहीं पा सके कि एक सेंट भी जो कि मैंने अपने ऊपर खर्च किया हो, ये सत्य है, परमेश्वर जानता है, एक व्यक्ति भी अभी भी यहाँ बैठा हुआ है, सारे समय मेरे साथ रहा है, एक भी सेंट मैंने कभी भी अपने पर खर्च नहीं किया, ये सब परमेश्वर के राज्य के लिए है, हर जगह हर चेक हर चीज। परंतु ये देखिए केवल इससे कोई अर्थ नहीं, ये था, ये पहले मेरा माना गया और तब कलीसिया के अभियान का, और उनके पास इसे करने के तरीके हैं, आप जानते हैं वे बचने के सारे रास्ते बना सकते हैं, इसलिए तब मैंने कहा ठीक है मैं बस इसे नहीं करूंगा। और उसने कहा यदि हम इस मुकदमे को इस प्रकार जीत जाते हैं क्योंकि मैं इसे व्यक्तिगत दान घोषित करूंगा, देखा सरकार के द्वारा व्यक्तिगत दान, और उसने कहा तब मैं ये करता हूँ तो $10,500 का उत्तराधिकारी होगा और तब आप इसमें फिर से आ जाएंगे और आपको और 5 वर्षों की सारी दोबारा जांच के लिए रोक लेंगे, समझे? जब आप चेक लिखते हैं तो ये जांच विभाग से निकलता है, वे इसके फोटोस्टेट करते हैं उस चेक की कॉपी। इस क्रम में मेरे पास सारे चेक भी थे जो कि इसमें से होकर निकले, इसलिए वे बोले यही वे आपको दोबारा वहीं ले जाएंगे। और उसने कहा दूसरी बात श्री ब्रैनम, यदि आप कभी भी सरकार में इस प्रकार बुलाए गए, इससे कोई मतलब नहीं कि आपने कभी क्या किया है, लोगों की दृष्टि में आप बेईमान हैं, देखा बस यही है। यहाँ मिसिसिपी के छोटे बैप्टिस्ट पादरी को देखिए, वो छोटा व्यक्ति, एक स्त्री ने कहा कि वो अंदर आया और उसका अपमान किया और वो व्यक्ति बाहर दूर देश से प्रमाण लेकर आया और हर जगह से, वो उस दिन और एक दिन पहले नगर के आसपास भी नहीं था, इतना होने पर भी जज ने पीठ फेर ली और स्त्री को उस पर लोग निंदा के लिए मुकदमा करने दिया, उसने कहा उसे करने दो, और जब उसे विशेष जांच के लिए सारे राष्ट्र के सम्मुख लाया गया, आप जानते हैं क्या हुआ, 70% अमरीकनों ने कहा जहाँ धुआं है वहाँ आग है, और वो बेचारा व्यक्ति ऐसे ही भोला जैसे मैं या कोई भी हो सकता है जीवन के बाकी बचे हुए दिनों में मेहनत करेगा जबकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं। थोड़ी देर के लिए मुझे बहुत बुरा लगा ये सोचकर कि मैंने अपना जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए लगा दिया, इस बात के यत्न के लिए, देखा कि लोग आपके कर चुकाएं और कार्य करें और वो करें जो ठीक है, और बेईमान ठीक व्यक्ति हो गए, और इस प्रकार से कहना चाहिए कि मैं स्वयं भी बेईमान था। मैंने सोचा मैंने संसार में क्या किया, और तब ये मेरे हृदय में आया और मैंने बाइबल में देखा, बाइबल में प्रत्येक व्यक्ति कोई अपवाद नहीं जिसके पास कभी भी आत्मिक कार्य रहा, यदि शैतान उन्हें आचरण में नहीं पकड़ पाया या किसी चीज में, तो सरकार ने उन्हें पकड़ा। पीछे कहीं भी जहाँ भी आप चाहें, मूसा, डेनियल, इब्रानी बालक, यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला, यीशु मसीह सरकार द्वारा मारा गया, फांसी की सजा, पौलुस, पतरस, याकूब महान, याकूब छोटा वाला, इनमें से हर कोई सरकार द्वारा मारा गया, क्योंकि यह है प्रत्येक सरकार शैतान की गद्दी है। यीशु ने ऐसा ही कहा, बाइबल यही कहती है, समझे। हर सरकार शैतान के द्वारा नियंत्रित होती है। एक सरकार आ रही है जो कि मसीह के द्वारा नियंत्रित होगी, परंतु ये सहस्र शताब्दी में होगा। परंतु ये सरकार, अब इसमें कोई मतलब नहीं कि हम कितना अच्छा सोचें, वे तब भी उनके पीछे वे लोग शैतान द्वारा शासित होते हैं। ये सारे राज्य, उसने कहा, ये मेरे हैं, मैं उनके साथ जो चाहता हूँ करता हूँ, मैं ये तुम्हें दे दूंगा यदि तुम मेरी आराधना करो। यीशु ने कहा, शैतान यहाँ से दूर हो, तू प्रभु की उपासना कर और केवल उसी की सेवा कर। और तब मैं हिम्मत हार गया, मेरी पत्नी सुन रही है, मैं घर में गया और मैंने कहा, नहीं श्रीमान, मैं यदि मैं देनदार हूँ तो मैं दूंगा, मैं देनदार नहीं हूँ और मैं इसे नहीं दूंगा, बस यही है। मैंने कहा, जो भी है मैं इसे कैसे दूंगा। इसलिए मैं घर गया और मैंने कहा, मैडा, बच्चों के मुख धोकर उनके कपड़े तैयार कर दो, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा, वे इतना ही नहीं, हर चीज ये बस उल्टा हो गया। और मैंने कहा, मैंने क्या किया, मुझे बताओ। और मैंने कहा, फिर भी मुझे $40,000, आप अनुभव नहीं करते कि मेरे लिए इसका क्या अर्थ है। और वो एक अच्छी पत्नी की तरह जैसी होती है अंदर आई। मैं बोला, मैंने कहा, मैं जा रहा हूँ। उसने कहा, तुम सोचते हो इससे कुछ भला होगा। इसके लिए प्रार्थना की थी तब भी। मैंने सोचा, ठीक है, अच्छा, मैं फिर प्रार्थना करता हूँ। मैं वापस अंदर गया और ऐसा लगा जैसे उसने मुझसे वचन कहा। हम हमेशा वचन पर ध्यान करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने इस विषय में क्या कहा, आप समझे। और एक दिन उससे पूछा, आप जानते हैं, कोशिश की, उसे दोष देने का यत्न किया सरकार को। उन्होंने कहा, क्या हम ये स्वतंत्र यहूदियों के लिए उचित है कि कैसर को राज कर या कर दें। उसने कहा, तुम्हारे पास सिक्का है। कहा, इस पर किसकी मूर्त है। कहा, कैसर की। कहा, तो जो चीज कैसर की है कैसर को, और परमेश्वर की चीज परमेश्वर को। और मैंने इस पर सोचा और मैंने बाइबल के पन्ने उल्टे और उसे पढ़ा। मैंने कहा, प्रभु, ये ठीक है, पर ये तो कैसर का नहीं है, ये तो आपका था, ये कैसर का नहीं था। यदि ये मेरा होता और मैं इसको अधिक कर भी देना होता या जो कुछ भी, भाई, तब तो ये भिन्न बात है कि ये कैसर से संबंधित है, परंतु ये तो आपका है, समझे। और ये पहली बात तो ये कि ये कैसर का है ही नहीं। और आप जानते हैं, वचन में उसके पास सदा उत्तर होता है। मैंने थोड़ा आगे पढ़ा और उसने कहा, कहता है, शमौन, क्या तेरी जेब में मछली का कांटा है। देखा, तो हमेशा एक छोटा कांटा और डोर रखता है। और मैंने बस आज रात ही मछली बैंक में वो नदी पर जमा किया है, समझे। कहा, मैंने जमा किया है और बैंक वाला निश्चय ही जो उसके पास है देगा। केवल नदी पर जा और कांटा उसमें डाल, और जब तू किनारे से उठे तो उसका मुंह खोलना, आप समझे, और वो तुझे एक सिक्का देगी। हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, उनके लिए ठोकर का कारण ना बने, समझे। शमौन, जा, कर चुका दे, वो मेरे और तेरे लिए होगा। मैंने सोचा, सच है परमेश्वर, तेरे पास मछली बैंक था और देश में हर चीज। मैं नहीं जानता कि ये कैसे होगा, परंतु हम गए, यहाँ गिरजे में भाई लोग बैठे हैं जो मेरी लिखा पढ़ी व्यवहार में थे, और मैंने ऋणी कागज पर लिखा और $40,000 पाए और उनका भुगतान किया। मैं घर गया। मैं जानना चाहता था कि जिस प्रकार मैंने वो चेक लिखे थे, यदि वे मुझ पर ही वापस निकलते हैं। मैंने कहा, ये कहता है मैं सारे करों से मुक्त हूँ, उसे पक्का करता है। इसके पश्चात वे निश्चय हैं कि वे सारे कागजों को देखेंगे। मैं बैंक से पूछता रहा कि देखें वे इसे करते हैं, और अंत में बॉब ने मुझे बताया। उसने कहा, बिली, उन्होंने ये कर दिया। और मैं अंदर गया और मैंने अपनी बाहें अपनी पत्नी के चारों ओर डाल दी। मैंने कहा, प्रिय, मैं स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्रता का कैसा अनुभव होता है, और इसलिए मैं इसको वापस कर सकता हूँ। उन्होंने ये मेरे लिए बहुत सरल कर दिया। मैं इसे $4,000 प्रति वर्ष के हिसाब से भुगतान कर सकता हूँ। साथियों, अब मैं अधिक समय नष्ट नहीं कर सकता, मुझे बाहर निकलना है और कार्य पर जाना है। यदि यीशु नहीं आता है तो मुझे भुगतान करने में 10 वर्ष लगेंगे, और जब वो करता है, जैसे भी हो, हमारे सारे कर्ज पूरे हो गए, आप समझे। और इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सब, मैं आपकी प्रार्थनाएं, और आज रात्रि मैं किसी चीज को निरंतर रखूंगा उस पर थोड़ा सा, परंतु आपकी प्रार्थनाओं ने जो मेरी सहायता की है, बहुत ही धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसे कोई मतलब नहीं कि हम कहीं भी रहें, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। आज रात्रि यदि प्रभु चाहा तो मैं कोई बयान देना चाहता हूँ जो मैं जानता हूँ, और अवश्य आइए। अब याद रखें श्रीमानो, ये क्या समय है, और हम, मैं विश्वास करता हूँ कि उनके पास बचे हुए सप्ताह के लिए सारा कार्यक्रम है, और सोमवार रात्रि है, सभा आज और आज रात्रि और सोमवार, सोमवार रात्रि जागने की सभा है, और तब ये आपको मंगलवार देगा, नव वर्ष का दिन। यदि आप नगर से बाहर हैं, तो घर वापस जा सकते हैं। और अब हमारे पास उस सभा के लिए अच्छे सेवक गण होंगे, अब एक वक्ताओं का बड़ा झुंड, और मध्यांतरों में मध्य रात्रि तक हर कोई बोलेगा, और कभी कभी वे प्रभु भोज देते हैं। यदि ये पंक्ति में है, मैं नहीं जानता चाहे वे लोग इस बार या नहीं, ठीक है, जैसा कि जहां वे चिल्ला रहे, शोर मचा रहे हैं, और धक्के दे रहे हैं, और पी रहे हैं, और चलते जा रहे हैं, हम प्रभु भोज लेते हैं। आमीन। नए वर्ष को प्रभु भोज से आरंभ करते हैं। अब आप सब आमंत्रित हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप स्वर्ग का परमेश्वर आपको ये ठहरने का अवसर देगा, यदि आप ठहर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम वचन पर आए, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि निश्चय ही मैं इस कलीसिया का धन्यवादित हूँ, इसके सदस्यों का, इस सुंदर सूट के लिए जो आपने मेरे लिए खरीदा है। आपको धन्यवाद, ये मेरे लिए बहुत कुछ है। आपके सारे कार्ड और हर चीजें इस बड़े दिन के दिनों, और उपहार जो आपने परिवार के लिए भेजे हैं, और ओह, मैं, ये मेरे लिए अनगिनत है, और ये प्रेम के छोटे चिन्ह मेरे हृदय की उस गहराई का बयान नहीं कर सकते जो मेरे हृदय में है, कुछ भी इस प्रकार का नहीं कर सकता जैसे इसने किया है, ये जानकर कि ये आपकी ओर से आया है। और इनमें से कुछ ने अपने बड़े दिन का उपहार रुपयों में भेजे हैं, और उनमें से कुछ ने भेजा है, जैसा कि एक भाई ने मुझे पॉकेट डायरी भेजी है, और जिस पर उसने मेरा नाम छापा है, और एक छोटा बिल्ला जिसे आप देखते हैं, जिस पर प्रभु की प्रार्थना लिखी है, और ओ, इस प्रकार की चीजें, ये केवल, ये हमारे लिए बहुत बहुमूल्य पदार्थ है। पत्नी और मैं और बच्चे आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, ये बहुत कम है, परंतु मैं ये कहूँगा, ये महान शब्द है जो मैं सोचता हूँ कि कोई कह सकता है, परमेश्वर आपको आशीष दे, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। और अब इन भाइयों को जो यहाँ कलीसिया में हैं, जो मेरे लिए राइफल लेकर आए हैं, मैंने अपना सूट पहना, परंतु मैं गिरजे में राइफल नहीं ला सका, परंतु ये था, सही में उनके पास मेरे विरोध में कुछ होगा, क्या उनके पास नहीं होगा, इसलिए मैं आपका निश्चय धन्यवादित हूँ मेरे भाइयों। और मैं उनके नाम उस छोटे से उस पर से पढ़ने जा रहा था, परंतु एक भाई कल आया, बोला, ओ नहीं, मुझे धन्यवाद मत देना भाई ब्रणम, इससे इसमें की सारी प्रसन्नता जाती रहेगी, समझे। इसलिए मैंने सोचा, हो सकता है कि बाकी भी इसी प्रकार सोच सकते हैं, परंतु मुझे आपका नाम मिला, उन्होंने इसे टाइप किया है, मैं इसे सदा याद रखूंगा, और प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। और आप जानते हैं कि मुझे कहाँ आराम मिलता है, और उस गुफा वाले कमरे में जाकर, और वहाँ बैठकर, और सारे समय वहीं रहता हूँ। जब मैं बहुत थक जाता हूँ, मैं आगे बढ़ नहीं पाता, तब मैं शिकार पर जाने के लिए सोचता हूँ, मैं कहीं गया हूँ या मछली पकड़ने गया हूँ। मैं इसकी सराहना करता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब क्या हम अपने सिरों को थोड़ी देर के लिए झुका सकते हैं, जैसा कि हम परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं? मुझे निश्चय है कि आज प्रातः अब भी गिनने योग्य, गिनने के लिए कुछ निवेदन है। इस प्रकार मैं अचंभित हूँ, जबकि हम अपने सिरों को झुकाए हुए हैं, हमारा विशेष निवेदन, यदि आप केवल उसे अपने हृदय पर रखें और केवल अपना हाथ उठाएं और कहें, परमेश्वर आप जानते हैं कि इस समय मैं क्या सोच रहा हूँ। प्रभु यीशु, आप प्रत्येक हाथ को देखते हैं, और आप जानते हैं कि उनके पीछे क्या है। इस हाथ के नीचे की ओर एक निवेदन है, और अब हम जीवित परमेश्वर के सिंहासन के पास आदर सहित आ रहे हैं कि वो महान सफेद मोती जो कि समय क्षेत्र के आर पार फैला है, जहाँ यहोवा परमेश्वर बैठा है, और मसीह का लहू वेदी पर है, और हम उस लहू में होकर उसके द्वारा बोलते हैं, जिसने कहा, मेरे नाम से पिता से कुछ भी मांगो वो प्रदान किया जाएगा। क्या आप आज प्रातः उनकी सुनेंगे और उनके निवेदनों का उत्तर देंगे? मैं आज अपनी प्रार्थना उनके साथ रखता हूँ, बाकी आप उसे प्रदान करेंगे। प्रभु, यहाँ पर रुमाल रखे हुए हैं जो कि बीमार और अपाहिज, और हमें बाइबल में सिखाया गया कि उन्होंने पौलुस से रुमाल और कपड़े लिए और उन्हें बीमारों पर रख दिया, और अशुद्ध आत्माएं उनमें से चली गईं और बीमारियां चली गईं। और पिता, जैसे कि हमें बहुत समय से मालूम है और हम निश्चय तौर पर जानते हैं कि हम संत पौलुस नहीं हैं, परंतु फिर भी हम ये अनुभव करते हैं कि वो संत पौलुस नहीं था, वो मसीह उसमें था, और आप पवित्र वचन के अनुसार कल, आज और सदा तक एक से हैं। और प्रभु, ये लोग विश्वास करते हैं यदि हम परमेश्वर से मांगे और इन रुमालों को लें और इन्हें बीमारों पर रख दें तो वे चंगे हो जाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, ये ऐसा ही होगा जब इन रुमालों को बीमारों पर रखा जाएगा, जैसा कि ये कहा गया, एक बार इसराइल अपने कर्तव्य को आरंभ करते हुए प्रतिज्ञा के देश को जा रहा था और उस कर्तव्य के मार्ग में लाल सागर ने उनका रास्ता रोका, परंतु परमेश्वर ने आग के खंभे में से होकर क्रोधित आंखों से देखा और सागर डर गया और उसने अपनी लहरें और पानी वापस मोड़ लिया और इसराइल सूखी भूमि से होता हुआ प्रतिज्ञा के देश को चला गया। अब प्रभु और आप यीशु के लहू में से होकर देखें और आप इस विश्वास के कार्य को देखें जो कि यहाँ इस प्रातः हम कर रहे हैं, और शैतान डर जाए और निकल जाए, और होने दे हर तीर्थ यात्री जो यहाँ उपस्थित है और हर उस पर जिस पर ये रुमाल रखा जाएगा, होने दे वो रास्ता खुल जाए और बीमारी निकल जाए, और होने दे वे प्रतिज्ञा के देश की ओर पवित्र आत्मा के द्वारा यात्रा करें, वो आग का खम्बा, प्रभु इसे स्वीकार करें। अब सभाओं को, वचनों को, प्रसंग को पढ़ने को आशीषित करें और होने दें पवित्र आत्मा इस प्रातः वचन को लेकर मधुरता से हम में से प्रत्येक को बांटे, प्रभु, जैसे कि हम किसी महान चीज के पास, किसी भयानक चीज जो कि हम नहीं जानते, बढ़ रहे हैं। प्रभु, हमारे हृदय अजीब प्रकार से हिल रहे हैं और अब हम प्रार्थना करते हैं, जबकि हम आपके और आपके वचन के पास आदर भाव से आते हैं, कि आप इसका अर्थ हमें बताएंगे। ये हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब आज रात्रि भूले नहीं, समय, ये क्या समय है। और अब इस प्रातः मैं चाहता हूँ कि आप निकालें, जिनके पास अपनी बाइबलें हैं, या निशान लगा लें, यदि आप ध्यान दें वचनों में, जहाँ से कि हम थोड़ी देर के लिए बोलेंगे, प्रेरितों की पुस्तक में पाया जाता है, हम दो या तीन स्थानों से पढ़ सकते हैं। पहले प्रेरित 26:15, प्रेरितों के काम 25वां अध्याय और 15वें पद से आरंभ करेंगे। तब हम प्रेरितों के काम 23:11 पढ़ना चाहते हैं, और यदि आप इसमें ये भी मिलाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं तो संभवतः इसे पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं होगा, फिलिपियों 1:20। ये सब लगभग एक ही क्रम में है, एक से ही वचन। अब प्रेरितों के काम की पुस्तक 26:15 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं,
And I said, Who art thou, Lord? And he said, I'm Jesus, whom thou persecutest. Arise, and stand up on thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose,
to make thee. मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ, जिसे तू सताता है। उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। प्रेरितों के काम 23:11 फिर से, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस धाड़स बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। परमेश्वर इस बहुत ही गौरवपूर्ण पवित्र वचन के पढ़े जाने पर अपनी पवित्र आशीषें दे जो कि हमारे सामने है। अब मैं एक व्यक्ति को बोलते हुए सुन रहा था, या बहुत समय नहीं हुआ सिखा रहा था, और उसने एक शब्द का प्रयोग किया, परम सत्य। और मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा शब्द है, मैं इसे बहुत बार प्रयोग होते सुना है संपूर्ण रूप से, जिसको मैंने वेबस्टर के शब्दकोश में देखा। वेबस्टर के अनुसार ये अपने में सिद्ध, अपनी सामर्थ्य में असीम, मुख्यतः एक अंतिम यानी कि परम सत्य, और अंतिम आमीन है, बस यही है। एक अपने में सिद्ध, ये सामर्थ्य में असीम शब्द अपने में सिद्ध यानी परम सत्य, ये अपने में सिद्ध है, इसका बस यही है, बस ये तय हो गया। और मैंने सोचा कि ये एक गौरवपूर्ण चीज है, ये बहुत ही बढ़िया शब्द है। और अब शब्द विचार का प्रगटीकरण है, पहले इसे एक विचार होना चाहिए और तब ये एक शब्द बन जाता है, क्योंकि बिना विचार के आप अपने शब्द नहीं बोलते हैं। जब हम अन्य भाषा बोलते हैं हमारे पास विचार नहीं होते, ये परमेश्वर के विचार होते हैं, ये परमेश्वर के विचार हमारे होंठों का प्रयोग कर रहे हैं। हम ना ही सोचते या जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं जब आप अन्य भाषा बोल रहे होते हैं, यदि ये प्रेरणा से बोला जा रहा है। जब आप अनुवाद करते हैं तो आप नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं, आप बस कहते हैं, यही बात है, समझे, ये परमेश्वर है। और भविष्यवाणी करना, आप अपने विचारों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये परमेश्वर है, क्योंकि आप बातें कहते हैं जो कि आप साधारणतः बोलने के लिए नहीं सोचेंगे, समझे। परंतु शब्द परम सत्य एक अंत है, और इसलिए मैं सोचता हूँ कि प्रत्येक के पास एक अंतिम होना चाहिए, और कोई भी महान कार्य जो कभी भी किया गया हो वहाँ उसके पीछे एक परम सत्य था। इससे कोई मतलब नहीं कि वो क्या था, उसके पीछे एक परम सत्य था। और प्रत्येक व्यक्ति जब किसी भी कार्य को पूर्ण करता है तो उसके पास एक परम सत्य होता है, और ये इसके उसके किसी और के द्वारा एक अंतिम प्रयास होता है जब तक आप एक परम सत्य तक नहीं पहुंचते, या एक आमीन, या जो भी आप हैं उसके अंतिम तक। आपको कुछ पाना है, आपको कहीं स्थिर होना है, दूसरे शब्दों में ये एक अंतिम पड़ाव जो कि हर कार्य के लिए है, ये कहीं भी है, ये बहुत सी विभिन्न बातों में से होकर निकलता है जब तक कि किसी स्थिर पड़ाव तक ना पहुंच जाए, परंतु इस सब के पश्चात एक आमीन है। कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए, बिना किसी एक के आप जीवन में नहीं चल सकते। आप जब आपने विवाह किया, आपके मस्तिष्क में किसी चीज की विचारधारा थी जब तक आपने एक पड़ाव तय ना कर लिया, और इसके लिए आपकी पत्नी या पति के लिए प्रेम होना चाहिए। ठीक है, ये हो सकता है कि वो जॉन की पत्नी के समान सुंदर ना हो, या वो ठीक है वो नहीं है, या ये वो, परंतु उसके विषय में कोई चीज है कि आप जिसने आपको आकर्षित किया, आप कहते हैं हो सकता है कि वो दूसरों के समान इतनी सुंदर ना हो, या हो सकता है वो इतना सुंदर ना हो जितना कोई दूसरा, परंतु कोई तो एक परम सत्य या सीम है जो उस व्यक्ति की भिन्नता है, और वहाँ जहाँ आप उस पर रुके हुए हैं। और यदि वहाँ ऐसा नहीं है तो अच्छा है कि आप विवाह न करें, वो पड़ाव, वो परम सत्य। हम बहुतों के विषय में सोच सकते हैं जिनका परम सत्य या सीम बाइबल में है। ओ, हम कैसे उस बाइबल की धारा में से होते हुए ले सकते हैं, और अब से केवल दो ही सप्ताह के लिए यहाँ रुकें और उसकी सतह तक को नहीं छू सकते, यदि हम बाइबल के परम सत्यों पर सोचते हैं। उदाहरण के लिए मुझे केवल एक या दो को लेने दें, उनका केवल संक्षिप्त वर्णन। अय्यूब को देखिए, अब उसके पास एक परम सत्य था, उस व्यक्ति के लिए हर चीज गलत हो गई, केवल एक मनुष्य। अब हम इतने साहसिक नहीं होंगे कि कहें कि वो बस ऐसे ही नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो था। पृथ्वी पर अय्यूब के समान कोई और नहीं था। वो परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध था और वो ये जानता था क्योंकि उसके पास एक असीम था, उसके पास एक परम सत्य था। जब हर चीज विरोधात्मक लगती थी, बीमारी आ गई। उसके मित्रों ने ये कहा होगा, अब अय्यूब तू जो इस अवस्था में है, जो ये सिद्ध करती है कि तूने पाप किया है, तू गलत है। और तब बिशप आते हैं, वे उन्हें अय्यूब को सांत्वना देने वाले कहते हैं। बजाय इसके कि उसको सांत्वना देते, उन्होंने उसके जीवन में पाप को छोड़ और कुछ नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है जैसा वो था। और उसके बालक मारे गए, उसकी संपत्ति जल गई, उसकी सब चीजें गड़बड़ हो गईं, और यहाँ तक कि उसका अपना जीवन विपत्ति में था। राख के ढेर पर बैठा हुआ है, सिर की चोटी से पैरों के तलवों तक फोड़े निकल आए हैं, और यहाँ तक कि उसकी प्रिय सुंदर संगनी उन बालकों की माँ बोली, तुझे परमेश्वर को कोसना चाहिए और मृत्यु से मर जाना चाहिए। परंतु उन सब के सामने होते हुए अय्यूब के पास एक परम सत्य था। ओ, यदि हम बीमारी के समय अपने को केवल उस परम सत्य से बांधे रखें। अय्यूब जानता था कि उसने यहोवा की आज्ञा को पूरा किया है, और उसने जो किया था उसमें उसका पूर्ण विश्वास था, क्योंकि वो यहोवा की मनसा थी। यदि हम केवल वो कर सकें, यहोवा उसके अपराधों के लिए होम बलि चाहता है। और अय्यूब ने न केवल अपने लिए परंतु अपने बालकों के लिए होम बलि चढ़ाई, और केवल ये परमेश्वर की इच्छा थी। ओ, आप कह सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी वो आज चाहता है, ये उससे कम है। केवल उसके वचन पर विश्वास करें, और यदि आप उसके वचनों को अपना परम सत्य बना लें, तो आप कोई भी दिव्य प्रतिज्ञा जो बाइबल में है, आप अपने प्राणों को उस पर स्थिर रख सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं कि कितने लहरें आपके चारों ओर उमड़ती हैं, आप तब भी स्थिर हैं अपने परम सत्य पर, और वो उस पर स्थिर है। और जब उसके सांत्वना देने वालों ने कहा कि तूने पाप किया है, वो जानता था कि उसने नहीं किया, वो तो केवल क्योंकि उसने यहोवा की आज्ञा का पालन किया था। और जब वो है प्रत्येक, वो व्यक्ति अंदर आया और बोला तेरे बालक मर गए, दूसरा वाला अंदर आया और बोला तेरे सारे ऊंट जल गए, और वहाँ आकाश से आग उतरी। देखिए, उसे अशांति देने हारों के पास क्या ही तर्क था। आपने देखा, आग आकाश से आई। अब अय्यूब इससे सिद्ध होता है, अय्यूब ने कहा इससे कुछ सिद्ध नहीं होता, परमेश्वर ने उसके बालकों को नहीं मारा होता यदि अय्यूब धर्मी जन होता। परंतु अय्यूब ने कहा, मैं जानता हूँ, मैंने वही किया है जो ठीक है। वो अभी भी कुछ थामे हुए था, उसके पास कुछ है कि भीतर तक ले जा सकता है, यही है। उसने इसे स्वीकार कर लिया, उसने बिल्कुल वही किया है जो उसे परमेश्वर ने करने के लिए कहा, और वो पूर्ण रूप से सुनिश्चित था, ये ठीक है। तब वो अंत में एक ऐसे स्थान पर आ गया जो कि परम सत्य था। तब अंत में वो अनुभव करने लगा कि वो रस्सियाँ जो कस रही थीं, वो अब ढीली हो रही हैं, चारों ओर से वापस लौट रही हैं, परंतु ये दृढ़ होना आरंभ हो गया, और आत्मा उस पर उतरा। भविष्यद्वक्ता होने के कारण वो उठ खड़ा हुआ, और उसने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरा बचाने वाला जीवित है, आमीन। समझे, वो अपने परम सत्य पे दृढ़ हो गया, वो उसके स्पर्श में आया होगा, वो जानता होगा कि जो कुछ उसने किया है वो ठीक था, और एक दिन वो उसके समीप पहुंच जाएगा। मैं जानता हूँ मेरा बचाने वाला जीवित है, और अंत के दिनों में वो इस पृथ्वी पर खड़ा होगा। यद्यपि चमड़ी के कीड़े इस शरीर को नष्ट कर दें, तो भी मैं अपने शरीर में मैं परमेश्वर को देखूंगा। उस समय वो जानता था, तब उसका परम सत्य स्थिर हो गया। अब्राहम एक असीम बाबुल की मीनार से निकलकर बाहर सिनार में आ रहा था, और वहाँ से बाहर निकलकर वो अपने पिता के साथ परदेशी बन कर रहा, और हो सकता है एक किसान था। परंतु एक दिन पीछे कहीं जंगल में, हो सकता है बेरियां तोड़ते हुए या अपने खाने के लिए किसी पशु को मारने जा रहा हो, और वहीं कहीं परमेश्वर उससे बोला जब वो 75 वर्ष का था, और वो और उसकी पत्नी सारा जो 65 वर्ष की होने पर भी संतान रहित थी, उसके पास कोई बालक न था। तब परमेश्वर ने उसे बताया कि तुझे सारा के द्वारा एक बालक मिलने वाला है, परंतु इस कार्य को पूरा होने के लिए तुझे अपने आप को अलग करना होगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सदा किसी शर्त पर होती हैं। आपको चाहिए कि पूरी तौर से होना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं कि प्रतिज्ञा में आप कितने आधारभूत हैं। ये सदा स्थितियों के अधीन होता है। हम यहाँ पर कैसे रुक सकते हैं और घंटों आगे पीछे वचन के द्वारा होते हुए इसे देख सकते हैं, समझे कि ये शर्त वो होती है जिसका कोई अर्थ होता है। आप जितना भी चाहे सैद्धांतिक हो सकते हैं, परंतु प्रतिज्ञाओं द्वारा ये स्थितियों के अधीन है, पहले से ठहरा हुआ और आदि आदि। ध्यान दें, अब अब्राहम उसने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब ये कितनी भयानक बात होगी कि एक सभ्य संसार से मेल करे एक व्यक्ति 75 वर्ष का 65 वर्ष की स्त्री के साथ, और जब से युवा थे एक साथ रह रहे थे क्योंकि वे रिश्ते में उसकी बहन थी, और अब उसके द्वारा एक बालक मिलने वाला है, परंतु उसके पास एक परम सत्य था, उसे कोई भी नहीं बहका सकता था। और जब पहला महीना हुआ कुछ नहीं हुआ, उसका परम सत्य स्थिर है क्योंकि वो जानता था कि उसने परमेश्वर से बातें की हैं। दूसरा महीना, दूसरा वर्ष, 10 वर्ष और 25वें वर्षों बाद जब वो 100 का था और सारा 90 की थी, उसका परम सत्य अब भी स्थिर है। और बाइबल कहती है जब उसकी मृत्यु के पश्चात जो वृतांत लिखा गया, उसने कहा इब्राहिम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर अपने विश्वास के द्वारा जरा भी नहीं डगमगाया, परंतु दृढ़ था, परमेश्वर की महिमा कर रहा था। क्यों? क्या आपने कभी सोचा क्यों? वो हाँ वाले परम सत्य पर था और केवल एक चीज उसे करनी थी कि अपने आप को अपने लोगों से अलग करना था, और परमेश्वर ने उसे कभी आशीषित नहीं किया जब तक उसने ये नहीं किया। उसने अपने पिता को लिया, पिता मर गया, उसने लूत को लिया, और जब लूत के इब्राहिम से अलग होने के पश्चात तब परमेश्वर उसके पास आया, बोला अब इस भूमि पर चल फिर। आज्ञाकारिता, स्थितियों के अधीन प्रतिज्ञा सदा परमेश्वर और उसके वचन के साथ चलती है। अब यहाँ देखें, हम मूसा को लें। मूसा एक भगोड़ा दास भविष्यद्वक्ता था जिसको परमेश्वर ने पाला पोसा और फिरौन के महल में उसे शिक्षित किया, और मूसा अपनी धार्मिक विद्यालय के प्रशिक्षण के साथ बाहर आया और उसने पहले व्यक्ति को घात किया। पहला छोटा सा दोष उभर कर आया, तब मूसा पर मृत्यु का भय छा गया। उसके पास परम सत्य नहीं था, उसके पास केवल उसके जन्म की माँ के द्वारा दी गई गवाही थी। वो एक अद्भुत बालक था। इस विषय में उसकी माँ के शब्द उसके पास थे। उसके पास लिपटी हुई पुस्तकें जिसे परमेश्वर ने हो सकता है कागजों पर कहीं उन्होंने लिख कर रखे थे, वो उसके पास थे कि परमेश्वर अपने बालकों की सुधि लेने वाला है। वो जानता था कि यही समय है, जैसे कि अब हम जानते हैं, कि कुछ घटित होने वाला है। अब मूसा जानता था कि वही समय था और वो जानता था कि वो इसके लिए चुना हुआ है, परंतु उसके पास परम सत्य नहीं था, समझे। और एक दिन रेगिस्तान में पिछवाड़े जब उसने अपनी धारणा खो चुका था, परमेश्वर ने उसे जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया और कहा मूसा, मैंने अपने लोगों का दुख दर्द देख लिया है, मैंने उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करवाने वालों के कारण होती है उसको मैंने सुना है, और मैंने अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण किया है, मैं उन्हें छुड़ाने के लिए नीचे उतर आया हूँ, अब तू मिस्र को जा। मूसा ने शिकायत करते हुए कहा मैं अच्छी प्रकार से नहीं बोलता, मेरा शब्द उच्चारण बहुत अच्छा नहीं है, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे। उसने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। उसने कहा उसे नीचे डाल, वो स्वर में बदल गई। कहा उसे पूंछ से पकड़ ले, वो फिर से लाठी में बदल गई। वो उसे आत्मविश्वास दिला रहा था, एक प्रमाण होना। जब परमेश्वर एक परम सत्य देता है, वो सदा उस परम सत्य को प्रमाणित करता है। तब मूसा जब वहाँ था और उसने अपनी लाठी वहाँ जादूगरों और फिरौन के सामने फेंकी, और जादूगरों ने भी आकर अपनी अपनी लाठी फेंकी, मूसा कभी भी नहीं भागा और कहा अच्छा मैं गलत था, मैं एक घटिया जादू की चतुराई दिखाने वाला था और मैं संभवतः गलत था। परंतु वो जानता था, वो सुनिश्चित था कि उसकी परमेश्वर से भेंट हुई है और वो स्थिर रहा। हम ये कह सकते हैं उसने बिल्कुल वही किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। इस प्रकार से उसने कर्तव्य को वैसे ही पूरा किया जैसे परमेश्वर ने करने को कहा था। मूसा ने उसकी आज्ञा को पूरा किया और स्थिर होकर परमेश्वर की महिमा को देखा। मूसा अपने परम सत्य पे स्थिर था, उसका प्राधिकार, और वो स्थिर रहा। और जब उसने ये किया तो उसके सर्प ने बाकी सर्पों को निगल लिया। देखा, वो उस परम सत्य पे स्थिर था। परमेश्वर ने कहा, जब तुम उन संतानों को छुड़ाए तुम फिर इसी पहाड़ पर मेरी आराधना करोगे। किस प्रकार से शत्रु हर प्रकार से ये प्रयत्न करता है कि हो सके तो वो आपको उस परम सत्य से हटा दे। जैसे ही उन्होंने मिस्र से निकलना आरंभ किया, वे लाल सागर के पास आकर घिर गए। दोनों ओर पहाड़ थे, एक घाटी में से होकर आए थे और वहाँ लाल सागर था। पहाड़ों पर से बच निकलने के लिए कोई मार्ग न था, इस ओर बचने का कोई मार्ग न था। फिरौन की सेना आ रही थी। रुकने का कैसा स्थान था? देखिए किस प्रकार से शैतान आपको ऐसे स्थान पर ले आता है जहाँ आप नहीं जानते कि आपको क्या करना है। परंतु याद रखें, यदि आपके पास अपना परम सत्य स्थिर है तो ये हो गया। मूसा जानता था कि परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की है कि तुम जब उन्हें बाहर ले आओगे तो तुम इस पहाड़ पर आराधना करोगे, और मैं उतर आया हूँ कि उन्हें तेरे हाथ से छुड़ाऊं और उन्हें दूसरे देश में रखूं। वो इसी के साथ स्थिर रहा और परमेश्वर ने एक उड़वाई भेजी जिससे सागर की तलहटी से पानी ही हट गया और वे सूखी भूमि पर चलकर पार हो गए। एक परम सत्य, हम कैसे पवित्र वचनों में से होते हुए निकल सकते हैं? डैनियल, उसका परम सत्य। शद्रक, मेशेक, अभिनदेव, उनका परम सत्य। दाऊद, उसका परम सत्य। सारे परम सत्य। पौलुस का भी एक था, वो जिसके विषय में हम पढ़ रहे थे। उसको मसीही केंद्रित बुलाहट थी और वो उसका परम सत्य था। यही कारण था कि वो नहीं डरा कि राजा अग्रिप्पा क्या कहेगा। वहाँ खड़ा हुआ, और अग्रिप्पा यहूदी था जैसा कि हम जानते हैं, और इस प्रकार से जब वो इन राजाओं के समक्ष खड़ा है, परमेश्वर ने उसे पहले ही बता दिया था कि वहाँ खड़ा होगा। इसलिए उसका एक परम सत्य था, इसलिए उसने स्वर्गीय दर्शन को सही सही बताया। उसने कहा, मैं वो नहीं हूँ, मैं इसके प्रति लापरवाह नहीं हूँ, मैं था। इसे गलत ना समझे, मैंने स्वयं से गलत व्यवहार नहीं किया, परंतु वो अडिग रहा और अनाज्ञाकारी ना रहा था। वो अंत घड़ी तक चिल्लाता रहा क्योंकि ये परम सत्य था, और कोई भी मसीह केंद्रित जीवन वही आपका परम सत्य है। अब जब से वो उससे दमिश्क की राह पर आमने सामने मिला, ये पौलुस के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी। अब याद रखिए, पहले तो वो ज्ञानी था, पवित्र शास्त्र में वो बहुत मजबूत था, परंतु उसके पास कोई निश्चित ठहराव नहीं था, परंतु सनेदी जो उसके पक्ष में होंगे और एक डिप्लोमा एक महान गुरु से। वो अपने क्षेत्र का महान व्यक्ति था, परंतु वो स्थिर नहीं था। केवल एक ही वस्तु जो उसके पास थी, उसका परम सत्य उतना ही दृढ़ होगा जितनी सुदृढ़ उसकी संस्था थी। केवल वो उतना ही दृढ़ हो सकता था, और वो उसके प्रति ईमानदारी से कार्य कर रहा था और मसीहों को लेकर उन्हें बांधकर और उन्हें धमका रहा था, और ये तक कि स्तफनुस को पथरवा कराया। मैं सोचता हूँ उसके जीवन के अंत के दिनों में जिस कारण वो यरूशलेम गया, जब भविष्यद्वक्ता ने उसे बताया था, पौलुस वहाँ मत जाना क्योंकि जंजीर और जेल वहाँ तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। और पौलुस ने कहा, मैं जानता हूँ, परंतु मैं केवल यरूशलेम में केवल एक गवाह के रूप में नहीं जा रहा हूँ, परंतु मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैं यीशु मसीह के लिए मरने तक को तैयार हूँ। क्योंकि वो जानता था कि उसने क्या किया है, और उसकी इच्छा ये थी कि वो अपनी गवाही को अपने लहू से मोहर करे। मरना एक शहीद, क्योंकि उसने परमेश्वर के एक शहीद को मारा था। और अब वो अपनी सारी शिक्षा के साथ दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था। महान शिक्षक गमलीएल की देखरेख में रहा, और वो किसी प्रकार यहूदी मत में पढ़ाया लिखाया गया, और तब भी उसके साथ वो कमजोर था। उसके पास कुछ विशेष चीजें करने की योग्यता नहीं थी, और यकायक वहाँ रोशनी चमकी, और हो सकता है कोई गर्जन और कड़कना, और उसे दंड मिला था, और वो भूमि पर गिर पड़ा। और जब उसने ऊपर देखा, वहाँ एक ज्योति चमक रही थी जिसने उसकी आंखों को अंधा कर दिया। और वो क्या ही अद्भुत थी, किसी ने भी ज्योति नहीं देखी सिवाय शाऊल को छोड़ के। ये उसके लिए इतना वास्तविक था, जब तक कि उसकी आंखें अंधी नहीं हो गईं, वो नहीं देख सका। आग के खंभे से जो उसके मुंह पर चमक रहा था, बिल्कुल अंधा हो गया और उसने एक आवाज को कहते सुना, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने कहा, प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ और तेरे लिए कठिन है कि तू पैने पर लात मारे। उठ और दमिश्क को जा और वहाँ तेरे पास किसी को भेजा जाएगा। तब जब वो वहाँ से उठा, वहाँ उस नगर में एक भविष्यद्वक्ता था। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसने दर्शन देखा और वो आया, हनानिया आया और शाऊल के पास अंदर आया, अपने हाथ उस पर रखे और वो दिव्य चंगाई से चंगा हो गया। तब वो उठा, बपतिस्मा लिया, प्रभु का नाम लेकर अपने पापों को धो दिया और तब उसके पास एक परम सत्य था। उसके बाद वो कभी भी वैसा ना रहा। वो सीधा एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया, एक स्थान से दूसरे स्थान, जिस चीज को उसने नष्ट करने का यत्न किया था उसे बचाने के यत्न में लग रहा। इस तरह से राष्ट्र को, किस तरह से मसीह संसार को आज प्रातः इस प्रकार के परम सत्य की आवश्यकता है। वे जो कि धार्मिक मतों से वास्ता रखते हैं और रीति रिवाजों को मनुष्यों के धार्मिक मतों के साथ परखा कि परमेश्वर के वचन को निरस्तर कर दे जो कि कल आज और सदा तक एक सा है, उन्हें परम सत्य की आवश्यकता है, उस दमिश्क के राह के अनुभव की, जीवित परमेश्वर जो बीमारों को चंगा कर सकता है और मरे हुओं को जिलाता और प्रेत आत्माएं निकालता है, एक वास्तविक परम सत्य। पौलुस जानता था कि कुछ हुआ है, कोई भी वहाँ ऐसा नहीं था जो उससे उसे ले सकता था, कोई भी बात कोई विशेषता नहीं रखती थी, वो स्थिर हो गया था और वो यही था। कोई मतलब नहीं कि क्या होता है, वो जानता है कि वो स्थिर है, मसीह केंद्रित जीवन। ओ, जो जीवन वो जिया था भिन्न जीवन था। अब याद रहे, वो एक धर्मी मनुष्य था और आज प्रातः आप में से कुछ लोग ऐसे ही हैं। और मैं जानता हूं कि आप अनुभव करते हैं कि ये टेप जो बनाए जा रहे हैं प्रत्येक राष्ट्र में जो आकाश के नीचे है सारे संसार में बजाया जाएगा। और आप में से कुछ लोग जो यहां उपस्थित हैं और कुछ जो बाहर हैं जहां दूसरे राष्ट्रों में अनुवादक के द्वारा ये बजाए जाएंगे, उन जंगली जातियों में जो अफ्रीका में और सब स्थानों में है। और आप धार्मिक अगुओं जिन्होंने कभी भी बाइबल की शिक्षा पाई है, आपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पाया है और हो सकता है कि आप इन सब बातों की व्याख्या करने के योग्य होंगे, परंतु यदि आपके पास परम सत्य नहीं है तो कोई अनुभव नहीं है। यदि वो अनुभव जो आपको हुआ, जिसका आप दावा करते हैं, आप इनकार करते हैं कि इसका हर एक वचन कलीसिया के लिए आज उतना ही सत्य नहीं है जैसा कि कभी था, और आप अपनी कला की स्नातक डिग्री पर विश्वास करते हैं या आपके पास जो भी है, यदि आप अपनी संस्था के विचारों पर विश्वास कर रहे हैं, वो ये कहेगी आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए और अब हमारे यहाँ दिव्य चंगाई नहीं है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जैसे उन्होंने पेंतेकोस्त के दिन पाया था वो आज लोगों के लिए नहीं है। मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों, यदि केवल यही आपके पास है तो आपको दमिश्क के राह वाले अनुभव की आवश्यकता है। आपको आवश्यकता है कि आप जीवित परमेश्वर से मिलें। आपको अपने मस्तिष्क में कोई मनगढ़ंत विचार नहीं रखना है, परंतु एक शिक्षा देना और उस अनुभव की आवश्यकता है जो विशुद्ध व सच्चा है। वही यीशु जो गलील में चला फिरा, वो आज जीवित है, वो सदा के लिए जीवित है और वो कल आज और सदा तक एक सा है, एक परम सत्य। कोई क्या कहता है वो आपको नहीं लेना है, आप अपने लिए जानते हैं, कोई सनसनी नहीं या इंद्रिय संवेदना। और यदि कोई संवेदना आपको होती है, और यदि कोई, ये हो सकता है वो वास्तविक संवेदना हो जिसका उल्लेख बाइबल में हो, और यदि कोई आप में इसकी व्याख्या करने का यत्न करे, कहे कि ये बातें किन्हीं और दिनों के लिए थी, तो आप उससे सावधान रहिए। ये सत्य है कि आप उससे सावधान रहें। इसे जानने का एक तरीका है, इसे वचन से परखिए जो लिखित मूल लिपि है। यदि मकान मूल नक्शे के विरुद्ध जा रहा है तो ठेकेदार उसे गिरा देगा और फिर से बनाएगा, परंतु इसे मूल नक्शे के आधार पर ही बनना है। तब उसका अनुभव क्या है इससे कोई मतलब नहीं। यदि आपके अंदर कुछ है जो आपको बताता है कि बाइबल सत्य नहीं है, परमेश्वर प्रेरितों, भविष्यद्वक्ताओं और शिक्षकों और चरवाहों की सामर्थ और आत्मा के वरदान अब वैसे नहीं है जैसे तब थे, जब वे उन प्रेरितों के द्वारा जो पेंतेकुस्त पर थे, तो फिर आपके परम सत्य में कहीं गड़बड़ है। तो इसे नामधारी गिरजों के मतों पर स्थिर होना चाहिए बजाय परमेश्वर की बाइबल के। जब उसने कहा आकाश और पृथ्वी दोनों टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी असफल नहीं होगा, देखिए कि आपका परम सत्य क्या है। हो सकता है कि आप पूरी तरह आश्वस्त हों कि आप पास्टर के साथ अच्छी संगति में हैं, और हो सकता है आप पूर्णतः आश्वस्त हों कि आप जिले के वरिष्ठ पादरी के संगति में हैं, और हो सकता है पूर्णतः आश्वस्त हों कि आप बिशप की संगति में हों या अपनी कलीसिया के महान व्यक्ति के। परंतु यदि आप नहीं, आपका परम सत्य यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि इस चट्टान पर मैं अपना परम सत्य रखूंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। इस बात का आत्मिक प्रकाशन कि वो कौन है और जानना ठीक है। ओ, जब आप पौलुस के समान हो जाते हैं, आपके पास भी वही परम सत्य होता है जो उसके पास था। एक मसीह केंद्रित जीवन उस जीवन से जो आपके पास पहले था भिन्न होता है। हो सकता है जो जीवन आपने जिया बहुत ही धार्मिक था। ओ, मैंने लोगों को कहते सुना है कि अब वे बहुत धार्मिक हैं। इसका इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने बहुत से धर्म देखे हैं, बहुत ही समर्पित, बहुत सी बार जो लोग मसीह कहलाते हैं उनसे अधिक लगनी से युक्त। जब एक माँ अपने मोटे काले बालक को लेकर लगभग इतना बड़ा और उसे मगरमच्छ के मुंह में अपने देवता के प्रेम में फेंक देती है, मुझे आश्चर्य होता है कि मसीहत कितनी निष्कपट है। जब एक व्यक्ति स्वयं को इस प्रकार से दुख देता है कि अपने शरीर में इस प्रकार से हजारों हुक गाड़ लेता है, पानी के गुब्बारे उस पर लटकते रहते हैं, उसे इस प्रकार से किए रहता है और आग की पगडंडी पर चलते हैं यहाँ से और भवन के अंत तक उस पर आते जाते हैं और इस प्रकार से पंखे से धधकाते हुए होते हैं अपने देवता के बलिदान के लिए। एक मूरत जिसमें लाल रत्न की आंखें होती हैं और आदि आदि, मुझे आश्चर्य होता है कि मसीहत कहाँ है। इसलिए निष्कपटता के लिए मत सोचिए, ये लगन युक्त होना ही नहीं है। लगन युक्त होना अच्छी बात है यदि वो सही चीज पर है। जैसे कि एक डॉक्टर दवाई दे रहा है, वो आपको निष्कपटता से जहर दे सकता है और वो आपको निष्कपटता से गंधक का तेजाब दे सकता है। आपने अपनी दवाई के नाम का पर्चा गलत भरा हो सकता है और आप उसे निष्कपटता से ले सकते हैं, परंतु वो आपका जीवन नहीं बचा सकता। समझे? नहीं श्रीमान, आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, और कोई भी चीज परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो, मैं चिंता नहीं करता कि वो क्या है और वो कितने समय से वो अस्तित्व में है, वो फिर भी गलत है। पत्रस ने पेंतेकुस्त के दिन उन्हें अनंत नुस्खा दिया और उसने कहा तुम में से हर एक प्रायश्चित करे और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करोगे। तुम्हारे और तुम्हारे बालकों के लिए और उनके लिए जिनको जो दूर हैं, प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये ठीक बात है, ये अनंत नुस्खा है। कोई नकली दवाई वाला इसे लेकर आपको मारता है, समझे? निश्चय ही आप जानते हैं नुस्खे में बहुत जहर है कि कीटाणुओं को जहर दें, और डॉक्टर जानता है कि आपका शरीर कितना सह सकता है। यदि वो अधिक जहरीला करता है तो ये आपको मार देता है, और यदि यह आप में पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो ये क्या करेगा? दवाई लेने से आपका कोई भला ना होगा। वो जानता है आपका शरीर कितना सहन कर सकता है। अब इसी प्रकार से परमेश्वर का नुस्खा है। कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कहता है कि ये इस तरह से या उस तरह से होना चाहिए। आप उसका विश्वास मत कीजिए। जब आप वचन का अक्षर अक्षर पालन करते हैं, बस यही है, ये ठीक है, उसे ही पकड़े रहिए। अब हम उन्हें लेते हैं, वे जो कहते हैं तुम्हें छिड़काव करना चाहिए था, उनके पास वे हैं जो कहते हैं तुम्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा की उपाधि का प्रयोग करना चाहिए। बाइबल में ऐसी कोई चीज नहीं है। बाइबल में किसी भी स्थान पर किसी ने भी कभी बपतिस्मा नहीं पाया सिवाय यीशु मसीह के नाम को छोड़कर। ये मत है जो कि रोमन कैथोलिक गिरजों में जोड़ा गया और रीति रिवाजों में चलता रहा, आज रात्रि हम इसे लेंगे। परंतु ध्यान दें, इस सब के बीच में नुस्खा बना रहा। यही कारण है कि हमारे बीच में बहुत सारे बीमार बच्चे हैं, क्योंकि डॉक्टर क्या कह रहा है वे नहीं सुनते। वो परम सत्य जब आप उस पर स्थिर हो गए, बस यही है, ये परमेश्वर का वचन है, ये असफल नहीं हो सकता। मसीह केंद्रित जीवन बहुत धार्मिक, परंतु ये मसीह केंद्रित जीवन नहीं था, आज हम में से बहुतों के पास है। और जब आप ये मसीह केंद्रित जीवन पाते हैं तो ये आपसे उन बातों को करवा लेता है जो कि साधारण रूप में आप नहीं करेंगे। साधारण तौर पर जो आप करेंगे ये आपसे उससे भिन्न करवाता है। मेरा अर्थ मूर्खता का काम करना नहीं, मेरा अर्थ आत्मा में करना कुछ ऐसा जो वास्तविक है, कुछ ऐसा जो विशुद्ध है। और जब आप किसी को इस प्रकार मूर्खता करते देखें, आप जानते हैं कि वे केवल किसी चीज का स्वांग भर रहे हैं, वे किसी विशुद्ध चीज की नकल कर रहे हैं, जबकि कहीं वास्तविक चीज है। जब आप नकली डॉलर देखते हैं तो याद रखें कोई एक सही डॉलर है जिससे नकल करके ये बना है, समझे। जब आप नकली को देखते हैं तो ये किसी वास्तविक वस्तु का असीम दिखावटी रूप है। ये कोई चीज है जो कि विशुद्ध है जिसकी ये नकल है। ध्यान दें, ये आपसे उन कार्यों को करवाता है जो साधारणतः आप नहीं करते। ओ, ये कुछ है। जब आपको ये परम सत्य मिल जाता है तो आप इसके प्रति सुनिश्चित होते हैं, आप इसके लिए सकारात्मक हो जाते हैं। आप वो ग्रहण नहीं करते जो दूसरे का अनुभव होता है। यही कारण है कि मसीहत ऐसी बनाई गई है जैसे बाइबल में छोटे बच्चे हों, और नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, जैसे स्कूल में एक छोटे छोटे बालक होते हैं। वे एक दूसरे की नकल करने का यत्न करते हैं, और यदि वो लड़का गलत है तो सब कुछ गलत है, समझे। आप उस सारे झुंड को गलत पाएंगे। नकल मत कीजिए, स्वयं उससे मिलिए। मेरा एक पुराना अच्छा मित्र यहाँ पीछे खड़ा है। ये मेरे मित्र का पुत्र है, बहुत लंबे समय से मित्र है, छोटा जिम पूल। अच्छा, उसके पिता और मैं विद्यालय में एक साथ बड़े हुए, और ओ क्या बढ़िया व्यक्ति है। छोटा जिम और मैं लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि वो बड़ा जिम मसीही हो जाए, एक वास्तविक विश्वासी। और छोटा जिम और मैं कल बातें कर रहे थे कि जंगल में परमेश्वर को कहाँ पाया जाए, और उसे प्रकृति में देखा, वहीं आप उसे पा सकते हैं, क्योंकि वो सृष्टि करता है और वो अपनी सृष्टि में है। और मैं याद करता हूँ, जिम और मैं शिकार पर जाना चाहा करते थे, और जब रात होती, ठीक है, हम नीचे जाकर अपनी साइकिलें लेते और इसी सड़क पर चढ़कर चलते। जब अंधेरा हो जाता तो कब्रिस्तान के पास से निकलते हुए मृत्यु का भय छा जाता था, और नीचे जाकर एक कप वाली आइसक्रीम लेते, और जिम को तालाब में पत्थर मारना अच्छा लगता। हम तब 10-12-14 वर्ष के लड़के थे, और तब मैं वहाँ आसपास बैठकर शिकार और फंदा लगाने की किताबें पढ़ा करता था, और मैं वहाँ पास बैठकर इस विषय में, समझे, दिन में सपने देखा करता। और अब कुछ लड़के मुझे देख सकते हैं, और तब मैं वहीं कहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी देखूंगा, और मैं कहा करता था कि लड़कों, वहाँ पहाड़ों पर एक अच्छी झोपड़ी होगी, और मैं सदा सपने देखा करता कि किसी दिन वहाँ पहाड़ों पर मेरे पास एक झोपड़ी होगी और शिकारी कुत्तों का एक बड़ा झुंड और कुछ बंदूकें। मैंने सदा यही सोचा, यदि मैं 30-30 की बंदूक किसी समय में मेरी अपनी हो। मैंने सोचा मैं कैसे संसार में अपनी 30-30 की राइफल कभी पा सकूंगा। और उस दिन खड़े हुए मैंने अपनी दीवार पर देख रहा था, और वहाँ बहुत अच्छी राइफलें देख रहा था जो मैं ले सकता था। मैंने सोचा अचंभे में डालने वाला अनुग्रह। मैंने सोचा मैं अपने आप को बढ़िया और अच्छे निशाने के लिए तैयार करूंगा, और तब हो सकता है किसी समय मैं पहाड़ों पर यात्रा करूं, कोई अच्छा शिकारी मुझे अपने साथ ले चलेगा कुछ इस प्रकार से, क्योंकि वो अपने जीवन को भालू के हमले से बचाना चाहेगा। वो बहुत निश्चित नहीं था, कोई धनी व्यक्ति मुझे अपने साथ लेगा, बस उसके साथ एक अंगरक्षक की नहीं जाऊंगा। हो सकता है एक दिन अफ्रीका में एक अंगरक्षक होकर शिकार खेलूंगा। ऐसा करने हेतु मैं केवल एक ही कार्य कर सकता हूं कि मैं स्वयं को एक निपुण निशानेबाज के रूप में प्रशिक्षित करूं। ओ, मैंने सोचा परमेश्वर इस पर विचार कि आप मुझे संसार भर में शिकार खेलने दें, कितनी बढ़िया बात है। जिम बैठकर पुस्तकें पढ़ा करता था, और मैंने कहा जिम, उसने कहा मैं इस विषय में पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा ये तो कोई कर चुका, मैं तो इसे स्वयं करना चाहता हूँ, मैं एक अनुभव करना चाहता हूँ। जब मैं मसीह में आया तो मैं किसी और का अनुभव नहीं ले सका, मैंने अपना ही चाहा। मैं याद करता हूँ जब मैंने जेन ग्रे की लोन स्टार रेंजर अकेला घुड़सवार सितारा पढ़ी। मैंने माँ की 2-3 झाड़ूएं तोड़ दी, झाड़ू लेकर घर के चारों ओर झाड़ू का घोड़ा बनाकर सरपट चाल में था। मैंने उस लंबे घुड़सवार सितारे की कहानी पढ़ी, और किस प्रकार से वो बिग बैंड के लिए न्याय लाया। तब मैंने एडगर राइस की कल्पित कथा टार्जन एंड एप पढ़ी, टार्जन और बिना पूंछ का बंदर। माँ के पास रोएदार एक टुकड़ा था, एक खाल का टुकड़ा या जो कुछ भी, जो श्रीमती वाथेन ने माँ को आग वाले स्थान से दिया था, वो उनके कमरे में पड़ा था, और मैंने बस वो टुकड़ा लिया। माँ नहीं जानती थी कि हवा इसे बाहर नहीं उड़ा सकती थी, और मैंने उसे लिया, उसे काट कर टार्जन के कपड़े बनाए और पेड़ पर बैठ गया, और मैं टार्जन की पोशाक पहने अपने आधे समय पेड़ पर बैठा रहता, क्योंकि मैंने देखा था कि उसने क्या किया, मैं भी वही करना चाहता था। परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने एक वास्तविक पुस्तक बाइबल पकड़ ली। मेरे गीत और कहानी यीशु के समान इस धरती पर, मेरी इच्छा उसके समान बनने की है। मैं बिशप नहीं बनना चाहता या कलीसिया में कोई महान व्यक्ति, कोई पोप या कोई पादरी। मैं यीशु के समान बनना चाहता हूँ। एक परम सत्य आपको भिन्न बना देता है। उसके वचन को पढ़ने में कुछ है और आपके हृदय में कुछ है जो यीशु के समान बनना चाहता है। आप निश्चित हैं। ये इस प्रकार है, मसीह के लिए परम सत्य, मसीह के लिए असीम, इस प्रकार है, ये एक जहाज के लंगर के समान है। जी हाँ, आपके पास परम सत्य होना चाहिए। और यदि मसीह आपका सीम है तो एक लंगर के समान है। जब आप समुन्दर बहुत भयंकर है और जहाज डूबने पर है, आपके पास केवल एक आशा है कि लंगर डाल दें। और तब यदि जहाज हिचकोले खा रहा है, समझे, यदि लंगर जहाज को थाम लेगा। आप जानते हैं हमारा एक गाना है, इस समय मैं लिखने वाले का नाम भूल गया हूँ, परंतु मेरा लंगर थामता है। जैसा कि एक छोटा लड़का, जैसे कि हम बहुत बार सोचते हैं, पतंग उड़ाते हुए आप कुछ नहीं देख पाते हैं, परंतु उसके पास डोर है। और एक व्यक्ति पास से निकलते हुए कहता है, टोनी तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं अपनी पतंग उड़ा रहा हूँ। उसने कहा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, डोर। बोला कि पतंग कहाँ है? बोला कि मैं उसे नहीं देख सकता। भाई तुम कैसे जानते हो कि तुम पतंग उड़ा रहे हो? उसने कहा, मैं अनुभव कर सकता हूँ, ये जोर से खींच रही है। समझे, इस डोर के अंत में एक परम सत्य था। एक छोटे तरीके से वो पतंग उसका परम सत्य था, जिससे कि वो कह सकता था कि वो पतंग उड़ा रहा है। यद्यपि वो उसे नहीं देख सकता था, परंतु उसने कुछ थाम रखा था, उस पर उसकी पकड़ थी। इसी प्रकार से एक मनुष्य जब पवित्र आत्मा से जन्म लेता है, तो वो किसी चीज को पकड़े हुए होता है। वो सामने लंगर डाले हुए है और तूफान उसे नहीं हिला सकता। वो जानता है, वो बिल्कुल ठीक है, वो लंगर युक्त है, ठीक है। अब यदि हम अपनी एक छोटी सी छाल पर जीवन के सत्य को पार कर रहे हैं, जैसा कि एक कवि ने कहा है, जीवन सूना स्वप्न नहीं है, और वो प्राण जो ऊँगता है मरा हुआ है, और चीजें वैसी नहीं है जैसी वो दिखती हैं। जीवन वास्तविकता है और जीवन धरोहर है, और इसकी कब्र उसका उद्देश्य नहीं है, क्योंकि तू मिट्टी है, मिट्टी में चला जाएगा, प्राण से नहीं बोला गया था। ओ, मैं सोचता हूँ ये बहुत सुंदर है। लॉन्ग फॉलो ने ये जीवन का गीत लिखा है, समझे। जबकि जीवन के गंभीर समय को पार कर रहे हैं, उन निराश और टूटे हुए जहाजों के लिए भाई देखने में क्या हृदय फिर से लेगा, समझे। अब हम जहाज पर चढ़े हुए जीवन की पवित्र धारा को पार कर रहे हैं, और मसीह जहाज पर समय के तूफानों के ऊपर है। जब तूफान तेज हो जाता है और वे उतार चढ़ाव में हैं, मैं प्रसन्न हूँ। मेरा लंगर जो कि पर्दे के भीतर वहीं कहीं सामने स्थिर है, कहीं भी तुम्हें नहीं हटा सकती। आप अपने परम सत्य पे स्थिर हैं। मसीह हमारा लंगर है। वो क्या है? वो वचन है। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। तब जब हम जानते हैं कि हमारे कार्यकलाप वचन के साथ हैं, हम जानते हैं कि हमारी शिक्षा वचन के साथ सिद्ध है, ना ही कुछ मिलाते हैं या ना ही कुछ घटाते हैं, केवल वचन, और हम वही परिणाम देखते हैं जो कि दूसरे इसी वचन में लंगर डाले हुए हैं, हमारे जीवन में जीवित है, तब आपका लंगर थामे रहता है। मसीह का जीवन आप में एक प्रकार से फिर अवतरित होता हुआ दिखाई पड़ता है, जैसा कि ये मसीह में था, क्योंकि ये परमेश्वर मसीह में था जो संसार का अपने में मेल मिलाप कर रहा था। और आप देखते हैं परमेश्वर आपके अंदर उसी वचन के एक आधार को थामे हुए है, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसा यीशु ने किया, और आप उसका जीवन देखते हैं। जो काम मैं करता हूँ तुम भी करोगे। वो जो विश्वास करता है, वो नहीं जो दिखावटी विश्वासी बनता है, वो जो सोचता है कि वो विश्वास करता है, परंतु वो जो विश्वास करता है, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा। क्यों? वो उसी चट्टान पर लंगर डाले हुए है। चट्टान क्या थी? वचन, सदा। आप वहीं पर स्थिर हैं। जब आप सागर में खो जाते हैं तो वो आपका उत्तर का तारा है। आप जानते हैं हमारे पास बहुत सितारे हैं, परंतु केवल एक ही सच्चा सितारा है, और ये हिलता नहीं, यही उत्तर का तारा है, क्योंकि ये पृथ्वी के मध्य में स्थिर है, ध्रुव तारा। इससे कोई मतलब नहीं आप पीछे की ओर हैं, ऊपर की ओर हैं, आप चाहे कहीं भी हैं, वो उत्तर का तारा एक सा ही है, ये आपका उत्तर का तारा है। अब आप देखते हैं क्या बहुत से तारे हैं जो स्थान बदलते हैं, परंतु यदि आप समुद्र में हैं, क्यों कोई भी नाविक या शिकार करने वाला जो जंगलों में घूमता है ये जानता है कि आपका उत्तर का तारा आपका अपना स्थान है, बस यही है। तब ये आपकी कुतुबनुमा के समान है। आपकी कुतुबनुमा मंगल की ओर या बृहस्पति की ओर या कहीं और संकेत नहीं करेगी, वो उत्तर के तारे या ध्रुव तारे की ओर संकेत करेगी, क्यों वो आपका परम सत्य है। ओ, अपने परम सत्य पर ध्यान दें। ओ, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, मुझे अनुभव हो रहा है कि ये आ रहा है, ध्यान दें। इस समय मुझे बहुत धार्मिक अनुभव हो रहा है क्योंकि ये पक्का आश्वासन है। ध्यान दें, आपकी कुतुबनुमा केवल ध्रुव तारे की ओर संकेत करेगी। केवल वही स्थान है जहाँ वो संकेत कर सकती है। यदि वो सही कुतुबनुमा है तो वो हर समय ध्रुव तारे की ओर संकेत करेगी, ये ठीक है ना? तब यदि आपके पास पवित्र आत्मा है वो केवल वचन की ओर संकेत करेगा, कभी भी नामधारी गिरजे की ओर संकेत नहीं करेगा, वो कभी भी किसी मत की ओर संकेत नहीं करेगा, वो कभी भी किसी और संकेत नहीं करेगा, वो केवल सीधा वचन की ओर संकेत करेगा। मेरा चिल्लाने को मन हो रहा है। ध्यान दें, ये मनुष्य के अंदर कुछ है जो धड़कता है। जब आप देखते हैं आपका सितारा सामने की ओर स्थिर है, यीशु मसीह वचन है, जो आत्मा आप में है आपको दहने या बाएं नहीं मुड़ने देता। केवल यही है जो कर सकता है, वो आकर परमेश्वर की बातें लेकर और उन्हें दिखाता है, उन पर प्रकट करता है। और यीशु ने कहा वो बिल्कुल वही बातें करेगा जो मैंने कही, वो आने वाली बातें तुम पर प्रकट करेगा, आपको समय से पहले दर्शाएगा, इससे पहले कि वो यहाँ हो, देखा, और वो मेरी बातों में से लेगा और उन्हें तुम पर प्रकट करेगा, और तब वो आने वाली बातें तुम्हें दिखाएगा। यूहन्ना 15, हम देखते हैं कि वो बातें दिखाता है, वो उन बातों को लेकर जो परमेश्वर की हैं और तुम्हें दिखाएगा, और वो आप उन बातों को प्रकट करेगा जो यीशु ने कही। दूसरे शब्दों में वो बातों का खुलासा करेगा। आज रात्रि कोने में वो इस प्रकार से रखेगा, क्योंकि वही थोड़ी देर बाद हम प्रयोग करने जा रहे हैं, निश्चित कर रहे हैं, उसे सकारात्मक कर रहे हैं, समझे? तब आप जानते हैं यदि आपका ध्रुव तारा जो किसी भी मसीह के लिए वचन है, कोई भी चीज जो वचन विरोधी है, देखिए मैं आपको कुछ बता दूं, इसे ध्यान पूर्वक सुनिए, ये परमेश्वर का पूर्ण दिव्य प्रकाशन है, उसकी इच्छा और मसीह का आगमन और हर बात इस पुस्तक में पूरी तरह से रखी हुई है, और यदि कोई भी चीज आपको इससे अलग करती है तो उस कुतुबनुमा को फेंक दीजिए, क्योंकि वो केवल मत है, वो केवल एक संस्था या केवल एक कागज है जो कि आपने अपनी जेब में रख रखा है, जो आपके कमरे में फ्रेम में टंगा है, ये एक मत है। वो कुतुबनुमा ढूंढिए जो आपको वचन पर स्थिर करे, आमीन। आप ध्यान दें, जब ये अनुभव पौलुस को हुआ तो वो मिस्र और अरब में कहीं चला गया और 3 वर्षों तक अध्ययन किया। उसे निश्चित होना था, और जब उसने देखा, जब पवित्र आत्मा ने उसको वचन दर वचन मार्गदर्शन किया, तो वो इब्रानियों की पुस्तक लिखकर और उन यहूदियों को दिखा सकता था, अवश्य, क्यों? वो उस पवित्र आत्मा के कुतुबनुमा पर केंद्रित था जो उसे उत्तर के तारे की ओर स्थिर रखता था। अब यदि आपको कोई चीज इसे विचलित करती है तो अच्छा है कि आप उसे छोड़ दें। ये वो वचन की ओर, केवल उसके वचन की ओर संकेत करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्रकट करने से या सिद्ध करने को आया है। कोई भी धार्मिक मत ये नहीं करेगा, कोई संस्था ये नहीं करेगी, कोई सामर्थ्य या कुछ भी ये नहीं कर सकता, केवल पवित्र आत्मा वचन द्वारा, और वो बीज है। अब आप एक गेहूं का बीज लें, गेहूं का एक अच्छा बीज, परंतु ये कुछ नहीं कर सकता जब तक उसमें अंकुर नहीं आ जाता, ये मरा हुआ है, तब ये गेहूं के बहुत से दाने उत्पन्न करता है। और मसीह वो जीवन है, वो परम सत्य। यदि गेहूं के अंदर वो परम सत्य नहीं है तो वो कभी नहीं उगेगा। यदि गेहूं के पास वो परम सत्य नहीं है, हो सकता है बाहर से बहुत सुंदर हो परंतु वो जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके द्वारा वो जीवित रहे। परंतु जब वो उस परम सत्य को पा लेता है, तब वो हर एक आलोचना का सामना कर सकता है और कहता है मैं फिर जी उठूंगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक परम सत्य है, ये उसके अंदर है, उसे तो फिर से जी उठना ही है। और जब ये यदि तुम मुझ में रहो और मेरा वचन तुम में रहे, तब जो चाहो तुम मांगो, यही वो परम सत्य है। परंतु यदि आपके पास मत और वगैरह वगैरह उसमें आप स्थिर हैं, आप तेल और पानी को नहीं मिला सकते। आप उसे केवल लेकर उसे किसी तरह फेंट दें, जैसा भी हो आप चाहें, वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दो भिन्न रसायन हैं। और आप मत और बाइबल को मिलाकर नहीं बना सकते, ये बाइबल के विरुद्ध है मिलाना। आप नामधारी गिरजा और स्वतंत्र उत्पन्न धर्म नहीं बना सकते, या स्वतंत्र जन्म उद्धार एक साथ नहीं मिला सकते, क्योंकि निश्चित है परमेश्वर केवल वास्ता रखता है। जो भी हो, मैं ये कहने जा रहा हूँ, परमेश्वर अपने कार्यक्रम को कभी नहीं तोड़ता, वो नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो अनंत है। आप जानते हैं, मैं अनुभव करता हूँ, ये बहुत सों के सामने से निकल जाता है, समझे? परंतु परमेश्वर अपने कार्यक्रम को नहीं बदलता। वो एक दिन कुछ ऐसा नहीं करे कर सकता है और फिर उसे बदल दे और फिर कुछ और करे और कहे कि उस दिन तक वो गलत था। परमेश्वर मनुष्य के झुंडों से बातचीत नहीं करता, परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से बात करता है, क्योंकि मनुष्य के विभिन्न विचार होते हैं, वो प्रकृति में विकसित हुआ है, और परमेश्वर को उस मनुष्य को लेना होता है और उसे पूरी तौर से उसमें व्यवहार करवाता है, उसको उसकी खुदी से बाहर निकालता है, जब तक कि उसे अपने ही स्वभाव में नहीं ले आता, और तब परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ बात करता है। पीछे सारे युगों में देखें, नूह, मूसा, भविष्यवक्ताओं, उनमें कभी भी एक समय में दो नहीं हुए, पिछले सारे युगों में निरंतर एक। इसलिए यदि आप कहते हैं भीड़ की सभा विचार में वही बचाव है, इसे देखिए, जैसा कि बहुत देर नहीं हुए मैंने यहाँ आराधनालय में प्रचार किया कि एक आहाब था और एक यशोपात था, और वो रमोत गिला जा रहे थे कि उन्हें पीछे की ओर धकेल दें। मूलतः वो ठीक थे, वो भूमि उन्हीं की थी, और वो शत्रु आरामी अपने बालकों का पेट उस गेहूं से भर रहे थे जो कि इसराइलियों को खाना चाहिए था, परमेश्वर की दी हुई संपत्ति। इसलिए मूलतः ये ठीक प्रतीत हुआ है, मेरे साथ चल, वहाँ साथ चल, और हम उनको भूमि पर से भगा देंगे। ठीक है, ये बहुत ठीक लगता है, मूलतः ये ठीक था, परंतु इसकी शर्त, यशोपात एक अच्छा व्यक्ति होने के नाते बोला, क्या हमें प्रभु से सम्मति नहीं लेनी चाहिए? समय के चलते आहाज जो पिछड़ गया था बोला, भाई बिल्कुल ठीक, सीमा रेखा का एक विश्वासी, आप जानते हैं, वो निश्चय ही मुझे ये सोचना चाहिए था। मेरे पास 400 इब्रानी भविष्यवक्ता हैं, उन 400 को मैं भोजन खिलाता हूँ, उनकी चिंता करता हूँ, वे राज्य में सबसे बढ़िया हैं, हम उन्हें लाएंगे। और उन सब ने मिलकर एक स्वर में कहा, जाओ चढ़ जाओ, प्रभु तेरे साथ है। परंतु उन्होंने उस परम सत्य को नहीं पकड़ा। तब जब उसने कहा, क्या यहाँ कोई और नहीं है? बोला, हाँ यहाँ एक और है, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ। उसने कहा, वो हमेशा मेरे लिए बुरा ही कहता है, समझे, हमेशा सही कह रहा है, वो कैसे अच्छी भविष्यवाणी कर सकता है, जबकि पूर्ण वचन एलिया जो कि उसके सामने था, उसने आहाब से कहा था, कुत्ते तेरा लहू चाटेंगे। अब कैसे एक प्रमाणिक भविष्यवक्ता कोई भी ऐसी बात कह सकता है जो कि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, और कैसे कुत्ते इजाबेल का मांस खाएंगे और खाद के समान मैदान में पड़ी रहेगी, इस प्रकार वे नहीं कह सके, यहाँ इजाबेल पड़ी है। एक मनुष्य इस प्रकार के श्राप के साथ कोई कैसे आशीषित कर सकता है? इसी तरह से आज है, कैसे एक मनुष्य इन बातों को जो कि समय के लोगों को परमेश्वर के वचन से दूर ले जा रही है आशीषित कर सकता है? करने के लिए केवल एक ही कार्य है, यदि आपको अपने आप नहीं खड़ा होना पड़ रहा है, प्रभु के नाम में उन बातों को श्रापित करें और उसके साथ स्थिर रहें, जब आप परम सत्य हैं। और आप कहते हैं, ठीक है भाई ब्रणम, आप लोगों को अपने से घृणा करने वाला बनाते हैं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करेगा, यही मेरा परम सत्य है। मांस के हाथों पर निर्भर नहीं कर सकते, आपको वचन पर निर्भर होना है जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा है। मिकाया कैसे जानता था कि वो सही है? उसने प्रतीक्षा की, उसे दर्शन मिला, उन्हें भी दर्शन मिला था, परंतु दर्शन वचन से मेल नहीं खाता था, और आज भी वही बात है। मिकाया ने अपने दर्शन की तुलना वचन से की थी, और तब उसने देखा वो और वचन एक साथ थे। आज यदि आपका दर्शन वचन विरोधी है तो उसे छोड़ दें, क्योंकि वो परम सत्य गलत है। मिकाया का परम सत्य बिल्कुल वचन के साथ मेल खाता था, इसलिए वो खड़ा हो और ये कह सकता था, वो जो भी उसने कहा और उसका विश्वास किया। जब उन्होंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, परमेश्वर का आत्मा किस मार्ग से जाता है, उसने कहा, तुझे पता लगेगा जब तू अंदर के कमरे में होगा, ठीक है। उसने कहा, जब मैं शांति में वापस आता हूँ, तुम इस मनुष्य को अंदर वाली जेल में डालो, और जब मैं शांति में वापस आता हूँ, आपने कहा, मैं इस व्यक्ति से निपटूंगा। ओह, अब मिकाया इस विषय में क्या है? जब वो वापस आएगा तो तुम्हारा सिर काट दिया जाएगा। मिकाया वैसे दृढ़ रहा जैसे स्तफनुस स्थिर रहा था, आमीन। ऐसे ही स्वेच्छा से जैसे मेरा प्रभु क्रूस पर गया, ऐसे ही सरलता से जैसे दानियेल शेरों की मांद में गया, या शदक मेशेक अभिनदो आग की भट्टी में गए, पूर्णतः वो वहाँ खड़ा रहा और कहा, यदि तू वापस आ जाए, क्यों? वो परम सत्य था। यदि तू वापस आ जाए तो परमेश्वर मुझसे कभी नहीं बोला तो मेरा सिर कटवा देना। उसके पास परम सत्य था, वो जानता था कि उसकी कुतुबनुमा जिसने उसका दर्शन में मार्गदर्शन किया है ठीक ध्रुव तारे के साथ है। जी हाँ श्रीमान, उसके लंगर ने स्थिर कर दिया। जी हाँ, वचन और ये केवल, यदि आपका परम सत्य, यदि आपके जीवन में परम सत्य है। एक ऐसा समय था जब आप जानते हैं शिष्टाचार का असीम था। मैं उस महिला का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु पूरा राष्ट्र, संपूर्ण राष्ट्र उसमें विश्वास करता था जो उस महिला ने कहा। मैं उसका नाम भूल गया, मैं यहाँ एक टिप्पणी लिख रहा था। मैं उस महिला का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ वो क्या था, परंतु कुछ वर्षों पहले उन्हें करना पड़ा। इस महिला ने जो उसने कहा, यदि उसने कहा छुरी बाएं हाथ से प्रयोग करें, तो बस यही था, वही परम सत्य था, वो इन सब बातों का उत्तर थी। और यदि आप कांटे को बाएं हाथ पर रखें तो आप बिल्कुल गलत थे। उसका क्या नाम था? ओ, यही है, बिल्कुल ठीक, जी हाँ, यही वो है। अब आप परम सत्य पर थे और वो थी, वो शिष्टाचार की परम सत्य थी। ये इसी प्रकार से होना चाहिए। इस प्रकार ओ, हम बहुत सी चीजें ऐसी बातें पाते हैं, परंतु अब हम पाते हैं वे समाप्त हो गईं। जैसा चाहें आप वैसे ही खाएं। जी हाँ श्रीमान, ये ठीक है, परंतु वो शिष्टाचार की परम सत्य थी, आपको उसी तरह से ही करना था। एक समय था जब एडोल्फ हिटलर जर्मन का परम सत्य था। जो कुछ भी उसने कहा, जब उसने कहा कूदो, वे कूदे। जब उसने कहा मारो, उन्होंने मारा। लाखों यहूदी, उसने अपना सर हिला दिया। आपने देखते हैं इस प्रकार के परम सत्य से क्या घटित हुआ? ये सामर्थ्य के समान लगता है, परंतु ये वचन विरोधी था। आप कैसे जानते हैं कि ये वचन विरोधी था? परमेश्वर ने कहा, क्या बालाम ने इज़राइल पर श्राप देने के लिए दृष्टि नहीं डाली थी? उसने कहा, मैं उसे बनेले सांड के समान देखता हूँ। तेरे तंबू क्या ही धार्मिक हैं? जिस किसी को तू श्राप दे वो श्रापित होगा, जो कोई तुझे आशीष दे वो आशीषित होगा। ऐसा दिखाई पड़ता है मानो हिटलर इसे देख सकता था। ऐसा दिखाई पड़ता है मानो वे जर्मन मसीही इसे देख सकते थे। समझे? वो परम सत्य पूर्णतः वचन विरोधी। आप जानते हैं कि जैसा कहा गया, परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, परंतु मनुष्य ने दास बनाए, एक दूसरे पर प्रभुता करने का यत्न करता है। हमारे पास एक प्रभुता करने वाला है, वो परमेश्वर है। परंतु हिटलर जर्मन का परम सत्य था। आज इसे देखें। अब देखें क्या होता है। ये गलत परम सत्य था। क्यों? ये वचन विरोधी था। और अब आप देखते हैं कि वो कहाँ चला गया, लज्जा। और यदि आपका परम सत्य किसी संस्था में है या किसी संवेदन में या यीशु मसीह के नाम के व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई है, यीशु मसीह के अतिरिक्त आप लज्जा के उसी भाग पर आएंगे, केवल दुर्दशा की प्राप्ति। समझे? यदि आपका परम सत्य मसीह नहीं है, वही केवल मनुष्य जीवन का केंद्र स्थान है, और मसीह वचन है, आपकी कलीसिया नहीं, आपके शब्द नहीं, केवल वचन। देखा, इस परम सत्य पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मसीह पर, वचन। एक समय था कि जब मुसोलिनी रोम का असीम था या परम सत्य था, मैं नहीं जानता। मैंने शायद एक लेख पढ़ा होगा, या ऐसा होगा कि मैंने पुस्तक में पढ़ा होगा, या किसी ने मुझे बताया। परंतु जब किसी का साक्षात्कार मुसोलिनी द्वारा किया जा रहा था, वो रोम को खेल कूद में लाना चाह रहा था, और वहाँ उसकी एक बड़ी मूरत खेल खिलाड़ियों के लिए खड़ी रहा करती थी। ये ठीक बात है, बहुत वर्षों पहले ग्रीक वासियों का ये विचार था, रोम ने सदा इसे लेना चाहा। खेलने वाले वे सब ठीक हैं, परंतु खेल कूद, परंतु याद रखें, ये मसीह का स्थान नहीं लेगा। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितने बलशाली हैं, इससे इसका कोई मतलब नहीं, वो सारी सामर्थ है। और आप देखिए कि उसने रोम को किस पर निर्मित करना चाहा, और उसने रोम को परम सत्य पर निर्मित करना चाहा कि वो वही परम सत्य है। और उन्होंने कहा कि उसका कार ड्राइवर एक दिन एक मिनट जल्दी आ गया और उसने उसे गोली मार दी। कहा, मैंने ये नहीं कहा था कि यहाँ 9 बजे से एक मिनट पहले आओ, मैंने कहा यहाँ 9 बजे आओ और उसे गोली मार दी। समझे? मैं तुम्हें एक मिनट पहले नहीं चाहता, मैं तुम्हें यहाँ 9 बजे चाहता हूँ। देखा, देखिए उसने अपने लिए कैसा परम सत्य बनाना चाहा, परंतु आप देखिए क्या हुआ। आपको याद है, आप में से बहुत से पुराने लोग यहाँ थे, हो सकता है रॉय स्लॉटर और पीछे की ओर, उसमें याद है वहाँ सामने जब मैंने आपको भविष्यवाणी बताई थी, एक दिन वहाँ ऑड फॉलो भवन में इससे पहले कि हम यहाँ आते मैंने कहा था मैसलोनी का अंत लज्जाजनक होगा। मैंने कहा उसका पहला आक्रमण वो इथोपिया को जाएगा और इथोपिया उसके पैरों पर गिर पड़ेगा, परंतु वो अपने अंत पर आएगा और कोई उसकी सहायता नहीं करेगा और कलंकित होकर वो गाड़ा जाएगा। उसके साथ यही हुआ। मैंने कहा था तीन वाद उभरे हैं, नाजीज्म, फासिज्म और कम्युनिस्टवाद। मैंने कहा था ये तीनों वाद चक्कर काटते हुए एक में आ जाएंगे, वो कम्युनिस्टवाद होगा। ध्यान दें, कम्युनिस्ट रोम को जला देगा। देखा, आप इस पर ध्यान दें, ये परमेश्वर के हाथों में एक औजार है। वे सोचते हैं कि वे परमेश्वर के विरुद्ध हैं और वे अनजाने में सारे समय इसी के लिए तैयार हो रहे हैं। वो उन्हें केवल एक कठपुतली की तरह प्रयोग कर रहा है, उसके हाथ में औजार के समान, जैसे उसने नबूकदनज़र और बहुत से दूसरों को प्रयोग किया। अब ध्यान दें, समझे? अब एक समय ऐसा था कि फिरौन मिस्र का एक परम सत्य था, परंतु देखिए वो अब कहाँ है, समझे? वो हर तरह से असफल हुआ। ओह, ये गलत प्रकार का परम सत्य था, इसलिए वे सदा विफल रहे। उनके परम सत्य मनुष्य द्वारा बनाए हुए हैं। आप मनुष्य द्वारा बनाए गए परम सत्य नहीं ले सकते। मैं चिंता नहीं करता यदि वो राष्ट्रपति हो, यदि वो अधिनायक भी हो, चाहे ये राजा है, चाहे ये कलीसिया है, चाहे ये संस्था है, यदि ये एक धार्मिक मत है। इस प्रकार के परम सत्य ठीक उसी प्रकार से नाश हो जाएंगे जैसे और दूसरे कालों के दौरान वे सभी परम सत्य नाश हुए। हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं, पीछे देखें, उस मनुष्य को देखिए जिसने सम्राटों पर विश्वास किया, उस मनुष्य को देखें जिसने अधिनायकों पर विश्वास किया, उन मनुष्यों को देखें जिन्होंने अपनी आशा उस प्रकार के परम सत्यों पर रखी, और देखिए वे आज कहाँ हैं। अब आइए हम फिर कर उन मनुष्यों को देखें जिन्होंने अपनी आशा बाइबल पर रखी, परमेश्वर के वचन पर, और उसे एक परम सत्य की तरह पकड़ लिया। देखिए वे आज कहाँ हैं। पौलुस उनका संक्षिप्त विवरण इब्रानी के 11वें अध्याय में देता है, उन्होंने क्या किया, कैसे उन्होंने राज्य अधीन किए, धार्मिकताएं की और आदि आदि, और वे भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए मारे मारे फिरे, जिनके योग्य संसार न था, उस उत्तम पुनरुत्थान के लिए महिमा में होकर प्रतीक्षा की। समझे, ये ठीक बात है, क्योंकि वे उनमें से बहुत सो ने ये आश्चर्यक्रम प्राप्त नहीं किए, और जो भी हो उन्होंने अपने शरीरों को दे दिया, उस पुनरुत्थान को सामने की ओर देखते रहे। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि उनके जीवन समाप्त हो रहे हैं। वे जाना चाहते थे और अपना बलिदान देना चाहते थे ताकि वे उस पुनरुत्थान को प्राप्त करें, और उन्होंने यही किया। अब परम सत्य जिस पर हम बात कर रहे हैं, परम सत्य, आप जानते हैं कि हमारा परम सत्य सर्वोच्च न्यायालय है। ये परम सत्य है, इस राष्ट्र में सारे विवादों का निर्णायक अंत है। ये ठीक है, उनका निर्णय परम सत्य है हमारे सर्वोच्च न्यायालय में। ये ठीक बात है। ओ, मैं जानता हूँ कभी कभी हम इसे पसंद नहीं करते, परंतु वो है, वो जो भी है वो परम सत्य है। जी हाँ श्रीमान, क्या होता है यदि ये हमारे पास नहीं होता, तब क्या था? परंतु वो परम सत्य है, निश्चय ही वो है। क्यों? वही है जिस पर हमारा राष्ट्र, उस पर स्थिर है। जब सर्वोच्च न्यायालय अपना अंतिम निर्णय देता है तो बस वही है और कोई नहीं। उसके पश्चात आप कहाँ जाएंगे? आप उनके निर्णय का पालन करने जा रहे हैं, बस आपको करना ही है। वे ही अंतिम वचन हैं, वे आमीन हैं। अब आप इसे अपने नगर के न्यायालय में परख सकते हैं, आम जिला अधिकारी को परख सकते हैं, और तब संघ को जा सकते हैं, सब प्रकार के न्यायालय और संघ न्यायालय को। परंतु जब हम सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं तो वो ही है। ये ठीक बात है। कभी कभी हम कहना नहीं चाहते, ठीक है मुझे उसका निर्णय पसंद नहीं, परंतु आप यत्न करते हैं कि उससे एक बार बच जाए। ये राष्ट्र का परम सत्य है, और क्या हो यदि ये हमारे पास ना हो? जी हाँ, हमारे पास एक परम सत्य होना ही चाहिए, प्रत्येक के पास एक होना चाहिए, आपके पास एक है। परंतु मैं आपको क्या बताने का यत्न कर रहा हूँ, एक पृष्ठभूमि, और ये दर्शाता हूँ कि परम सत्य क्या होते हैं। अब राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्र का परम सत्य है, किसी भी प्रकार के विवाद का ये अंतिम है। वे इसे तय करते हैं, जो वे कहते हैं बस वही है। गेंद के खेल में एक परम सत्य होता है, वो एम्पायर है। ओ हाँ, बल्कि कभी कभी हम उसके निर्णय को पसंद नहीं करते, परंतु जो भी है वही है, वो एम्पायर, उसका निर्णय अंतिम शब्द है। ये ठीक बात है। इससे कोई मतलब नहीं कि दूसरे क्या कहते हैं। यदि वो कहता है कि वो टकराई है तो फिर वो टकराई है। ये ठीक बात है, निश्चय ही। इससे कोई मतलब नहीं कि दूसरे क्या कहते हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं। और आइए इस पर थोड़ा सोचें, यदि आप, मैं गेंद खेलने नहीं जानता हूँ, परंतु मैंने इसे जरा ले लिया है। एक एम्पायर वो गेंद के खेल के लिए परम सत्य है। उनमें से एक कहता है कि वो गेंद थी, दूसरा कहता है तुम झूठे हो। ये कहता इस प्रकार नहीं था, उसे इस तरह होना चाहिए था। एम्पायर ने कहा टकराई है बस। समझे, बाकी अपना स्थान लेकर बैठ जाते हैं। इनमें से कुछ को थोड़ी परेशानी होती है, परंतु मैं कल्पना करता हूँ कि वे उस पर अपने हृदयों में बुड़बुड़ाएंगे, परंतु जो भी है वो टकराई है। क्यों? उसका शब्द ही अंतिम है। पहला बेसमैन बोला आप समझिए वो पास से निकल गई। दूसरा कहता है देखिए ये है जो, वो कहेगा टकराई है, इसका बस यही है। तब चुप रहिए और अपने स्थान पर वापस चले जाइए। क्या हो यदि उस गेंद के खेल में एम्पायर ना हो तो? ओ, क्या आप कल्पना कर पाएंगे कि वो खेल किस प्रकार का होगा? उनमें से एक बोला कि वो टकराई थी, दूसरा बोला ये, दूसरा बोला वो, और एक और बोला तुम झूठे हो। वे विवाद करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। गेंद के खेल में आपके पास एक परम सत्य होना चाहिए, और वो वहाँ पहुँचता है, इससे कोई मतलब नहीं यदि आप उसे पसंद करते हैं या नहीं, या जो भी हो, वो परम सत्य है, वो परम सत्य है, उसका शब्द अंतिम है। इससे कोई मतलब नहीं कि इस विषय पर आप क्या कहते हैं, तरीका यही है। अब यदि उनके पास नहीं था तो ये सारा खेल उपद्रव में बदल जाएगा, क्या ये ठीक बात है? वो राष्ट्र क्या होगा जहाँ संघ न्यायालय नहीं होगा? इस राष्ट्र में सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता तो ये कहा जाता, ये कहाँ पहुँचता? राष्ट्र में उपद्रव होता। यदि वहाँ ना होता, यदि वहाँ गेंद के खेल में एम्पायर ना होता तो वो समाप्त हो जाता। आप पहली गेंद भी नहीं फेंक सकते थे जब तक कोई झगड़ा ना कर लेता। कोई वहाँ खड़ा होता और हो सकता था कि वास्तव में वो प्लेट पर जाती और दूसरा व्यक्ति कहता ओ नहीं 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 ये नहीं चलेगा, और तब आप वहाँ जाते। पहली गेंद फेंकी गई थी, वे इस पर विवाद करते। उनमें से एक ने कहा ये टकराई थी, वे कहते हैं ये नहीं टकराई थी। समझे, आपके पास कोई एक ऐसा होना चाहिए कि खेल उससे स्थिर रहे, और वो एम्पायर है। जब वो कहता है टकराई तो टकराई, यदि वो कहता है ये बॉल है तो वो बॉल है। जो भी वो कहता है वो मान्य है, यही है। और यदि उसके पास नहीं होता तो कोई खेल नहीं होता। मैं आपको एक और परम सत्य दर्शाता हूँ। वहाँ एक लाल बत्ती है, एक लाल बत्ती। जब वो कहती है रुको, इसका अर्थ है रुको। यदि आप उसे पार करते हैं तो आप उसके लिए भुगतान करने जा रहे हैं। परंतु यदि इस नगर में कोई बत्ती, रुकने वाली बत्तियां ना होती तो ये किस प्रकार का नगर होता? इसका तो परम सत्य होना ही चाहिए। मैं चिंता नहीं करता कि पुलिस वाला क्या कहता है या कोई भी वहाँ खड़ा है, वे दूसरे स्थान पर हैं। यदि कोई ये सिद्ध कर सकता है कि आप हरी बत्ती पर निकलते चले गए, मैं चिंता नहीं करता कि पुलिस वाले ने क्या कहा, वे गलत हैं। जब बत्ती कहती है जाओ, इसका अर्थ है जाओ, वो परम सत्य है। आप सिद्ध कर सकते हैं कि बत्ती ने कहा जाओ। हो सकता है पुलिस वाला कहीं और खड़ा हो, नगर का अधिकारी कहीं हो, इससे जरा भी अंतर नहीं पड़ता। यदि आपके प्रमाण है कि जाओ तो आप जाइए, और यदि कोई आपसे टकराता है तो ये उसका कसूर है। आप सिद्ध कर सकते हैं, ये ठीक बात है। हम जिस विषय में बात कर रहे हैं हम उसे सिद्ध कर सकते हैं, ये ठीक बात है। अब क्या होता है यदि वहाँ लाल बत्ती नहीं होती? एक चौराहे तक जाता, देखिए क्या होता। एक कहता अरे रास्ते से हट जाओ, मैं जल्दी में हूँ, मुझे काम पर जाना है, अब मुझे देर हो गई है, अब मैं सीधा जा रहा हूँ। दूसरे ने कहा आप जरा सोचे कि आप, क्योंकि मैं ही हूँ जो यहाँ से निकल रहा है, क्योंकि मैं पहले यहाँ आया था, और मैं एक स्त्री को निकलते हुए देख सकता हूँ और अपने बाल बांधती है। क्या होता यदि हमारे पास लाल बत्ती ना होती? क्या वहाँ रास्ता जाम नहीं होता? कलीसियाओं के साथ भी आज यही बात है, देखा? ये ठीक बात है। यही कारण है कि हमारे पास इस प्रकार का नामधारी गिरजों का रास्ता रुका हुआ है। ये बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी कहीं नहीं पहुँच पा रहा है, वे खड़े हुए उपद्रव कर रहे हैं। यहाँ परमेश्वर की बत्ती है, जब ये कहती है जाओ, जब ये कहती है रुको, ये काफी दूर है, तब रुकिए। ये ठीक बात है। यही जहाँ पर हम आधारित हैं, ये वचन है, वो नहीं जो लोगों के झुंड ने कहा या किसी झुंड के लोगों ने कहा। यीशु ने कहा जो विश्वास करेंगे उनके ये चिन्ह होंगे। चलिए चलें, तुम सारे जगत में जाओ, हर प्राणी को सुसमाचार सुनाओ। आप जानते हैं उतना ही अच्छा जितनी शिक्षा अच्छी है, परंतु यीशु को कभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। ये ठीक बात है, उतनी ही अच्छी जितनी ये कलीसिया हैं, इमारतें हैं, उसे इनकी कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ी। उतने ही अच्छे जितने ये अस्पताल थे, हम कलीसियाओं ने अस्पताल बनाए, ये ठीक है, हम इसकी सराहना करते हैं, परंतु उसे कभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने कलीसिया से कहा सुसमाचार प्रचार करो, और सुसमाचार केवल वचन में ही नहीं आया, परंतु सामर्थ्य और वचन के प्रकटीकरण में आया। पौलुस ने ऐसा ही कहा, तो फिर जाकर सुसमाचार को प्रकट करो। ओ, यदि ये ऐसा ही होता, ओ, हम आज उस समय में रह रहे हैं कि इससे पहले कभी भी हमारे पास इतने अच्छे डॉक्टर नहीं हुए। हमारे पास बहुत अच्छी दवाएं हैं जिन्हें कभी प्रयोग किया गया, आप ये जानते हैं, और हम उन व्यक्तियों का सम्मान करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, मैं करता हूँ और मैं आशा करता हूँ आप भी करते हैं। वे व्यक्ति जिन्होंने अपनी भावना की समझ से उनके पास कार्य करने के लिए दो इंद्रियां थी, वो देखना और अनुभव और वे और सुनना, वे हृदय की आवाज से काम करते हैं या एक एक फोड़े का स्पर्श अनुभव करके या ऐसा ही कुछ, या किसी चीज को देखकर जो वो देखकर कर सकते हैं, एक बीमारी का फैलना या कुछ मुख पर जिससे मुख ढका हो या शरीर कहीं से, वे उन्हीं आधारों पर कार्य करते हैं, समझे, क्योंकि वे दवाइयां खाने का यत्न करते हैं और इतनी कि वो उसे मार दे और आपको ना मारे और आदि आदि, वे नहीं करेंगे, उस पर कार्य करना उनका धंधा है और हम इसकी सराहना करते हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी दवाएं, बहुत अच्छे अस्पताल और पहले से अधिक बीमारियां, हमारे पास अधिक अविश्वास जितना पहले कभी नहीं था। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, सेवकों ने अपने आप को संस्थागत कर लिया है और बड़े बड़े नामधारी गिरजे कलीसियाएं बना ली हैं और उनमें कुछ भी ले लेते हैं और आदि आदि और कुछ भी करके कलीसिया के सदस्य बना रहे हैं, और उन्होंने बहुत से आधुनिक धार्मिक विद्यालयों को अपना लिया है एक मशीनी चूजे के समान, और उन्हें अंडे से इस प्रकार बाहर निकाला जाता है जैसे चक्की से, और कभी कभी परमेश्वर के विषय में अधिक नहीं जानते, जैसे हॉटेंटॉट जाति मिस्र की रात्रि के विषय में नहीं जानती, उनको उसमें से इस प्रकार निकाल कर लाया और आप उसी स्थिति में हैं, समझे। ओ, हमें हमारी कलीसियाओं को किस चीज की आवश्यकता है, एक व्यक्ति की जिसके पास परम सत्य हो। हमें मेथोडिस्ट गिरजे में, बैप्टिस्ट कलीसिया, पेंटिकॉस्ट कलीसिया, प्रेस्बिटेरियन कलीसिया में किस चीज की आवश्यकता है, एक परम सत्य की, एक परमेश्वर का जन जो वचन पर खड़ा होकर स्थिर रहे और मसीह पर स्थिर रहे, और उस सभा को ऐसी स्थिति में ले आए जहां हर व्यक्ति वचन की स्थिति में ही चले, वो वचन प्रकट होता हुआ दिखाई देता रहे, अनुकरण करता रहे, सारे संसार में विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। उन्होंने कहा वो उसी के साथ समाप्त हो गए। यीशु ने कहा तुम सारे संसार में जाकर हर प्राणी को सुसमाचार प्रचार करो। हम अभी तक सारे संसार में नहीं पहुँचे हैं और हर प्राणी से अभी दूर हैं। सारे संसार में किसको, हर प्राणी को क्या घटित होगा, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम से वे प्रेत आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषाएं बोलेंगे, यदि वे सांपों को उठा लेंगे या प्राणनाशक वस्तु पी लें तो उन्हें हानि नहीं पहुंचेगी, यदि वे अपने हाथों को बीमारों पर रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। वहाँ एक परम सत्य थामे हुए हैं, उस वचन को, उस उत्तर के तारे को, वो कुतुबनुमा जो उनके साथ स्थिर रहती है, हमें इसी की आवश्यकता है। परंतु हमने जाकर संस्थान बना लिए, लोगों को संस्थागत कर दिया, सदस्य बढ़ा लिए और बैप्टिस्टों से उपद्रव किया क्योंकि वे वो विश्वास नहीं करते जो हमने किया, मेथोडिस्ट क्योंकि वे ऐसा नहीं करते, और हमने तोड़कर बड़ा धर्म विद्यालय बना लिया और बड़े गिरजे बना लिए, अच्छे कोमल वस्त्र से बैठने का स्थान और बड़ा ऑर्गन बाजा और आदि आदि, और अच्छी वेशभूषा वाली भीड़, और उनकी कलीसिया में मेयर और आदि आदि हैं, और हमारे पास क्या है, एक बिरती का गठर जो नामधारी कलीसिया के परम सत्य से बंधा हुआ है, मृत्यु। ओ, ऐसा ना हो प्रभु, ऐसा ना करे, यदि मैं अपने मार्ग में मर जाता हूँ तो मेरा परम सत्य यीशु मसीह है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, यदि हर कोई छोड़ जाए। किसी ने कहा, डॉक्टर डेविस ने मुझसे कहा, बिली तुम इस प्रकार की बातें प्रचार करते हो, तुम इनका प्रचार गिरजे के खंभों को ही करोगे, तो फिर मैं गिरजे के खंभों को ही प्रचार करूंगा, क्योंकि परमेश्वर योग्य है कि इब्राहिम के लिए इन खंभों से संतान उत्पन्न कर दे। ठीक है, परमेश्वर का वचन सत्य है, तुम सोचते हो वे तुम्हारा विश्वास करेंगे, मैंने कहा ये मेरा कार्य नहीं है, मेरा कार्य ये है कि परमेश्वर के वचन के साथ सच्चा बना रहूं, ये ठीक बात है। बोले तुम सोचते हो कि इस प्रकार से तुम शिक्षित संसार से मिल पाओगे दिव्य चंगाई की धर्म शिक्षा के साथ, मैंने कहा ये दिव्य चंगाई मेरी नहीं है, ये उसकी प्रतिज्ञा है, वही है जिसने ये प्रतिकार दिया है। ओ, और मुझे याद है जब वो दिन के बड़े उजाले में नीचे उतरा, सामने नदी पर खड़ा हुआ था 1933 जून में, जैसे जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आगे भेजा गया था और मसीह के पहले आगमन के आगे आगे चला, मैं तुझे संदेश के साथ संसार में मसीह के दूसरे आगमन के आगे भेजता हूँ, और बेदारी की ये आग जब से 15 वर्षों से बनी है समस्त संसार में और लगभग हर पहाड़ पर फैल गई, दिव्य चंगाई सामर्थ और फिर से पुनः स्थिति में आना समस्त शास्त्र में है, और अब मैं विश्वास करता हूँ कि ये सामने अंतिम शिखर पर टकराने पर है, जो कि वो विश्वास लाएगा जिससे कि कलीसिया उठाई जाकर महिमा में पहुँचेगी, और वो संदेशों में है। वास्तव में हम अंत समय में हैं, हम में और सब कुछ कर चुके हैं, परंतु अब ये चीज हमारे ऊपर मंडरा रही है, मैं यहाँ हूँ। जी हाँ श्रीमान, एक यहाँ है, ये ठीक बात है। जैसा कि मैंने कहा, वो लाल बत्ती, इससे मामला तय होता है। बस लाल बत्ती आपको बताती है कि कौन जाता है। इससे कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कहता है, ये तो वो है जो लाल बत्ती कहती है। यदि आप लाल बत्ती का ध्यान नहीं करेंगे तो वास्तव में आप यातायात के वाहनों को रोक देंगे। वहाँ तो एक परम सत्य होना ही चाहिए। जी हाँ श्रीमान, जिस तरह की एक कलीसिया के पास एक परम सत्य होना ही चाहिए, कलीसिया के लोगों के पास, आपके पास अपना परम सत्य होना ही चाहिए। परंतु आज हर कलीसिया के पास अपना एक परम सत्य है, समझे? वे यत्न नहीं करते। हम बैप्टिस्ट ये विश्वास करते हैं, हम मेथोडिस्ट ये विश्वास करते हैं, हम प्रेस्बिटेरियन ये विश्वास करते हैं, हम पेंटिकॉस्टल ये विश्वास करते हैं। परंतु आप बाकी को क्यों नहीं लेते? बाकी बचे हुए वचन के साथ क्या मामला है? हम बैप्टिस्ट डुबाने में विश्वास करते हैं, ये अच्छा है। अब पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में क्या है? अन्य भाषाएं बोलने के विषय में क्या है? दिव्य चंगाई के वरदान के विषय में क्या है? भविष्यवाणी के विषय में क्या है? ओ नहीं, हम ये नहीं मानते, ये तो दूसरे युग के लिए था। ओ लड़के, पेंटिकॉस्टल तुम कहते हो? अच्छा, हम प्रमाण के लिए अन्य भाषाओं के बोलने में विश्वास करते हैं। निश्चय ही अन्य भाषाओं में बोलना ठीक बात है, परंतु फिर भी ये प्रमाण नहीं है। बहुत से लोग अन्य भाषाएं बोलते हैं, ये सच बात है, और जहाँ तक वे जब तक करते जाते हैं, शैतान किसी भी वरदान का जो मिला है नकल कर सकता है, वो भी वरदान जो बाइबल में है। पौलुस ने कहा, यदि मैं मनुष्यों और सरदूतों की भाषा बोलूं, यदि मैं अपनी देह बलिदान की तरह जलाने के लिए दे दूं, यदि मैं अपना सारा माल बेचकर गरीबों को खिला दूं, और यदि मुझ में विश्वास हो कि पहाड़ों को हिला दूं, यदि मैंने धार्मिक विद्यालयों में जाकर सारा ज्ञान सीख लिया जो सीखने के लिए है, तब भी मैं कुछ नहीं हूँ। ये मसीह व्यक्ति, मसीह उसे स्वीकार करता है, और आप बगैर उसके वचन को ग्रहण किए उसे ग्रहण नहीं कर सकते। पहले वचन को ही आना है, तब वचन में जीवन आता है और उस वचन को प्रकट करता है। क्या यीशु नहीं कहता, यदि मैं पिता के कामों को नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करें? ये तो परमेश्वर का वचन था जो प्रकट हो रहा था। परमेश्वर मसीह में था, जगत का मेल मिलाप अपने में कर रहा था। कि वो क्या था? वो था वो परम सत्य, वो वहाँ अनंत परम सत्य था। तब आप कहते हैं, क्या वो अनंत है भाई बहन? वो था, तो फिर आज के लिए क्या है? यीशु ने कहा, वो जो मुझ पर विश्वास करता है, जो कार्य मैं करता हूँ वो भी करेगा, यही परम सत्य है। ठीक है, हर एक का अपना एक परम सत्य है। ओ, ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे कि न्यायियों के दिनों में था। हर एक व्यक्ति जो उसकी दृष्टि में ठीक होता था वही करता था। न्यायियों के दिनों में हर व्यक्ति का अपना एक परम सत्य था, जो भी उसने करना चाहा वही उसने किया, और अब भी ऐसा ही है। हर व्यक्ति ने अपनी दृष्टि में ठीक किया। आप जानते हैं क्या कारण था कि उन्होंने न्याय के दिनों में ऐसा किया? इससे आपको थोड़ा धक्का लग सकता है, परंतु न्यायियों के दिनों में ऐसा करने का कारण ये हुआ क्योंकि इन दिनों में कोई भविष्यवक्ता नहीं था कि प्रभु का वचन आता। इसलिए हर व्यक्ति वही करता था जो वो अपनी दृष्टि में करना चाहता था, और बिल्कुल यही आज के दिन में हो रहा है। इन नामधारी कलीसियाओं के दिनों में हमारे पास कोई भविष्यवक्ता नहीं है, परंतु परमेश्वर ने एक की प्रतिज्ञा की है। देखा, समझे? उसने किया। अंत के दिनों में वो खड़ा करेगा और फिर से एलिया को वापस दृश्य में भेजता है, और वो बालकों के हृदयों को पूर्वजों के विश्वास पर फेरेगा, वापस मूल पेंटिकॉस्टल पर। आप जानते हैं उसने ये कहा है, और मैं जानता हूँ आप उल्लेख करेंगे जैसा उसने यहोन्ना के साथ किया, मत्ती 11वें अध्याय की छठवें पद से। मेरा विश्वास है कि यही है। जब उन्होंने कहा, तुम क्या सोचते हो ये मनुष्य कौन था? ये यहोन्ना। उसने कहा, यदि चाहो तो मानो, वो यही है जिसके विषय में कहा गया था, देखो मैं अपने आगे अपना दूत भेजता हूँ, ये मलाकी 4 नहीं वरन मलाकी 3 है। परंतु याद रखिए, यदि वो मलाकी 4 था तो वचन असफल हो गया, क्योंकि उसने कहा, परंतु इस समय के लगभग सारा संसार जल जाएगा और धर्मी दुष्टों की राख पर चलेंगे। भाइयों, इसे मिलाइए मत, वही रखिए जो ये कहता है, ये ठीक बात है। उसने अंतिम दिनों में इसकी प्रतिज्ञा की है, और ये बिल्कुल बीच में है। याद करिए, जब न्याय थे, हर व्यक्ति ने वही किया जो वो चाहता था। वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, कोई व्यक्ति उस वचन को जीवित नहीं कर सका। वहाँ कोई भविष्यवक्ता नहीं था। प्रभु का वचन सदा भविष्यवक्ता के पास आता है, ये ठीक बात है, और उससे हमेशा घृणा की गई। केवल वो एक छोटा झुंड जो उससे प्रेम करता है, और देखिए, परंतु मेरा अर्थ वहाँ सदा एक रहा। परमेश्वर अपनी नीति नहीं बदलता, वो नहीं कर सकता, और परमेश्वर है। यदि परमेश्वर ने कभी कोई चीज कहीं या कुछ किया, अगली बार भी उसे वही करना है। जब परेशानियाँ आती हैं, यदि वो दूसरी बार वो नहीं करता जो उसने पहली बार किया, तो उसने पहली बार गलत किया। और कौन परमेश्वर को गलत करने का दोषी ठहराएगा? आप कौन है जो परमेश्वर पर पाप लगा सकते हैं? यीशु ने कहा, तुम में से कौन मुझको पाप का दोषी ठहरा सकता है? अविश्वास, जो विश्वास नहीं करता दोषी ठहर चुका। तुम में से कौन मुझे दिखा सकता है कि मैंने हर वो बात पूरी नहीं की जो मसीह को करनी चाहिए थी? देखा, कोई भी एक शब्द नहीं बोला। वो था, मसीह भविष्यद्वक्ता था, और उसने ये सिद्ध कर दिया कि वो वही था। सैकड़ों वर्षों से उनके पास कोई भविष्यद्वक्ता नहीं था जब से मलाखी हुआ, और यहाँ पर वो दृश्य में उठ खड़ा हुआ है। वो लोगों के लिए भेद था और उनकी कलीसियाओं के लिए ठोकर खाने की चट्टान था, क्योंकि उसने कहा, देखो सय्योन में एक कोने का पत्थर है, एक बहुमूल्य परखा हुआ, एक ठोकर लगने की चट्टान। जी हाँ, परंतु जो कोई भी इस पर विश्वास करेगा कभी भी लज्जित ना होगा। ये ठीक बात है, वो वहाँ था और वे बिल्कुल ठीक वचन को पूर्ण किया। परंतु वे जिन्होंने उस पर विश्वास किया उनके पास परम सत्य था। वो छोटी मार्था जब उसने लाजर को कब्र में से निकलते देखा, वो जान गई कि वो कौन था। इससे पहले कि ये किया गया, उसके पास जान लेने के लिए एक परम सत्य था, मैं जानती हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है जो कि संसार में आने वाला था। अब जबकि मेरा भाई मर गया है, केवल वचन कह दे, परमेश्वर उसे कर देगा। आमीन। वो पूर्णतः सुनिश्चित थी। ये ठीक बात है। जब उसने ये कहा और उस स्त्री का ये अर्थ पूर्ण हृदय से था, उसने कहा कि तुमने उसे कहाँ गाड़ा, कहा कि आ और देख। और वो वहाँ एक दर्शन के साथ खड़ा था, क्योंकि उसने कहा, मैं तब तक कुछ नहीं करता जब तक पहले पिता मुझे दिखा न दे। संती यूहन्ना 5:19। उसे दूर भेज दिया, लाजर के घर से दूर भेज दिया। उन्होंने उसके पास संदेशा भेजा कि आकर प्रार्थना करे। वो जान गया कि लाजर मरने वाला है। और कुछ समय बीतने के पश्चात उसने कहा, हमारा मित्र लाजर सो गया है। उन्होंने कहा, वो ठीक करता है। उसने कहा, वो मर गया, और तुम्हारे कारण मैं प्रसन्न हूँ कि मैं वहाँ नहीं था। वे उससे उसके लिए प्रार्थना करने के लिए कह रहे थे। तब वो वापस आया, कहा, परंतु मैं जाकर उसे जगाऊंगा। ओ, ये नहीं कि मैं जाकर उसे देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जाऊँगा कि उसे जगा दूँ। क्यों? पिता मुझे पहले ही दिखा चुका है कि क्या करना है। कब्र पर गया, वहाँ एक मनुष्य खड़ा है, वो परमेश्वर शरीर में खड़ा है। वो कह सकता था कि पत्थर घुल जा, और वो घुल जाता। परंतु उसने उन स्त्रियों से कहा, उन बेचारी छोटी स्त्रियों से, छोटी नवयुवतियों स्त्रियों से कहा कि पत्थर को हटाओ, आपको भी कुछ करना है। देखा, और उन्होंने वो पत्थर लुढ़का दिया। वहाँ इतनी बदबू छोड़ रहा था कि वो बीमार से हो गए। वहाँ वो खड़ा है। ओ, मैं उसे देख सकता हूँ कि उसने अपना छोटा सा दुर्बल ढांचा सीधा किया, क्योंकि बाइबल ने कहा उसमें कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसे चाहते, वो देखने में अच्छा नहीं था। समझे, दाऊद के समान वो चुना हुआ राजा था जब वो छोटा सा गुलाबी चीज था। समझे, उन सब बड़े बड़े लोगों ने कहा, क्या उसके सर पर ताज सुंदर नहीं लगेगा। यशे ने कहा, सैमुएल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मना कर दिया है। अपने सारे पुत्रों को लाया, कहा, क्या तेरे पास कोई और है? हमारे पास एक है, परंतु वो राजा जैसा नहीं लगेगा। क्यों? वो छोटा है, लटके हुए कंधे गुलाबी सा दिखता है, जाओ उसे लेकर गाओ। और जैसे ही वो चलता हुआ भविष्यद्वक्ता के सामने आया, आत्मा उस पर आ गया। वो तेल को लेकर दौड़ा और उसके सर पर उंडेल दिया, कहा, ये तुम्हारा राजा है। बस, जी हाँ श्रीमान। और यीशु वहाँ झुके हुए कंधों के साथ खड़ा है, और हो सकता है सफेद हो रहा हो, जबकि अभी वो 30 वर्ष से ऊपर का नहीं है। बाइबल ने कहा वो 40 वर्ष का सा लगता है। यहूदियों ने कहा, तू जो 50 वर्ष से अधिक का पुरुष नहीं है, और तू कहता है कि तूने अब्राहम को देखा है? उसने कहा, पहले इसके कि अब्राहम था, मैं हूँ। ओ, कमाल है, कमाल है। संत यूहन्ना 6। अब हम इस बात को पाते हैं कि वो यहाँ कब्र के पास खड़ा है। वो जानता है कि उसे दर्शन मिला है, जान गया कि ये होना ही है। पत्थर को हटाओ, वो बदबू मार रहा था, कब्र के कपड़ों में लिपटा हुआ था, पिछले 4 दिनों का मरा हुआ है, उसकी नाक इतने समय में पहले ही गिर चुकी थी। वहाँ वो खड़ा हुआ अपने हल्के से शरीर को सीधा करता है, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। वो जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। मुझे एक व्यक्ति बताएं जो कभी भी इस प्रकार का बयान दे सका हो। जो कोई जीवित हो और मुझ में विश्वास किया हो, वो कभी नहीं मरेगा। क्या तू इसका विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ प्रभु। यद्यपि ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने जब उसे बुलाया उसे निराश कर दिया, उसने फिर बुलाया, वो नहीं गया। परंतु यहाँ वो कहती है, मैं जानती हूँ कि तू मसीह है जो इस संसार में आने वाला था। उसने कहा, लाजर बाहर आ। और एक व्यक्ति जो 4 दिनों से मृत था, क्यों? क्या मसीह के पास परम सत्य था? उसने दर्शन देखा था, वो असफल नहीं हो सकता था। ये ठीक बात है, वो असफल नहीं हो सकता था। वो अंततः सुनिश्चित था, और मार्था अंततः सुनिश्चित थी। यदि वो उसे पहचान सकती थी कि जो विश्वास उसने उसमें किया है, वो वही पाएगी जो उसने मांगा है। ये ठीक बात है, वे उस स्थिति में थे। परम सत्य वो वचन में स्थिर है, और वो यही था। हर व्यक्ति आज अपनी दृष्टि में वही करता है जो उसे अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भविष्यद्वक्ता नहीं है। न्यायियों के दिनों में देखिए, इसे देखें। उन दिनों में जब मैं विश्वास करता हूँ कि वो एलिया या एलिशा उनमें से एक था, हाँ, कि वो मृत बालक, वो सुमेनी स्त्री, उसने एलिया उन दिनों में परमेश्वर का जन था, न कि कोई बुद्धिमान शिक्षक। क्यों? वो एक बूढ़ा व्यक्ति जो संग संग चला। क्या आप थे? आ जाए तो आज आप दरवाजे पर आ जाए तो हो सकता है आप उसे भगा दें। संपूर्ण राष्ट्र ने उसे घृणा की, जिजाबेल और उन सब ने उसे घृणा की, क्योंकि वो व्हाइट हाउस में बैठी हुई और सब स्त्रियों से वो करवा रही थी जिस प्रकार उसने स्वयं किया, और उन सब ने उसका अनुसरण किया। और आहाब घूम गया था, उसका मस्तिष्क उसके सामर्थ्य से घूम गया था। आज हम इस स्थिति से अधिक दूर नहीं हैं, लगभग वैसी ही है, और आप उसी स्थिति में हैं। वे सब लोकप्रिय थे, वे सब प्रभावशाली थे, परंतु वो छोटी बूढ़ी सुमेनी, हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि वो सुमेनी थी। जब वो आई और देखा एलिया में सामर्थ्य थी, उसने कहा मुझे लगता है कि ये एक पवित्र मनुष्य है। और जब वो बालक मृत पड़ा हुआ था, उसने कहा गधे पर काठी कस और मत रुक। वो वहाँ गई, वो जान गई, और मुझे ये पसंद है जिस प्रकार से वो आई। उसके पास एक परम सत्य था, उसका स्थिर स्थान। एलिया ने कहा ये तो सुमेनी आ रही है, वो दुखित है, परंतु मैं नहीं जानता कि क्या गड़बड़ है। देखिए, परमेश्वर अपने जन को सब कुछ नहीं दिखाता, केवल वही जो उन्हें बताना चाहता है। इसलिए उसने कहा उसका हृदय शोकित है, परंतु मैं नहीं जानता। उसने कहा गेजी दौड़ के मालूम कर और देख क्या गड़बड़ है। उसने कहा क्या तेरा सब कुछ कुशल से है? क्या तेरा पति कुशल से है? क्या तेरा पुत्र कुशल से है? उसे देखिए, ओ ये है वो। उसने कहा सब कुशल से है। क्यों? वो अपने परम सत्य के पास आ गई, सब ठीक है। और वो घुटने पर आ गई, पहले उसके चरणों में गिर पड़ी, और गेहजी ने उसे उठाया उसके स्वामी के सम्मुख। ये ठीक नहीं है, उसे उठाया और वो उसे बताने लगी। अब उसके पास कोई परम सत्य नहीं था, वो जानता था कि दर्शन के द्वारा उसके पास सामर्थ्य थी कि उसे एक बालक दे, परंतु अब वो क्या कर सकता था। वो अपनी छड़ी लेकर उस कमरे में गया, रख दी, सारे दरवाजे बंद किए, हर एक को बाहर निकाल दिया। वो कमरे में चक्कर मारने लगा, उसके पास एक परम सत्य था यदि वो उससे संबंध स्थापित कर सके, आगे पीछे इधर उधर कमरे में। ओ कमाल है, सीधे ही सीधे उसने अनुभव किया, किसी चीज ने उसे प्रभावित किया। वो बालक पर पसर गया, फिर से उठा चला गया, बालक कुछ हिला गर्म हुआ, वो वापस फिर से उठा और आदि। वो अपने परम सत्य से सही संबंध स्थापित नहीं कर सका। प्रभु ये क्या है? आप करने के लिए क्या कहना चाहते हैं? कोई संदेह नहीं, जब वो घूमा उसने दर्शन देखा कि वो छोटा बालक खेलते हुए दौड़ रहा है, रस्सी कूद रहा है, या वो करते हुए इस प्रकार से खेल रहा है। उसने अपने आप को बालक पर लिटा दिया, उसने उसकी नाक से अपनी नाक मिला ली, उसके होंठ से अपने होंठ से, और परमेश्वर की सामर्थ्य ने बालक को जीवित कर दिया। ये क्या था? उस स्त्री का परम सत्य भविष्यद्वक्ता था, भविष्यद्वक्ता का परम सत्य परमेश्वर था, और दोनों वचन के साथ पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, परमेश्वर की सामर्थ्य और रचयिता। उसने बालक को फिर से जिला दिया। निश्चय ही यही कारण था कि हर मनुष्य अपने हिसाब से करता था, क्योंकि उसके पास भविष्यद्वक्ता नहीं था जिसके पास प्रभु का वचन आता है। वचन और भविष्यद्वक्ता उन दोनों में नहीं थे। मैंने इस दिन को जिस दिन में रहते हैं उस दिन देख लिया था, जिस दिन मैं मसीह में परिवर्तित हुआ था। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया। इससे पहले कि गिरजा पकड़ता, मैं संभवतः धर्म निंदक होता। जी हाँ श्रीमान, मैं ये सारे लोगों का मिला जुला झुंड और हर कोई, अच्छा यहाँ आइए और हमारी सदस्यता ले लो, और यदि आप नहीं लेते हैं ठीक है, आप अपनी चिट्ठी लेकर और जाकर दूसरे वाले के सदस्य हो जाएं। ओ क्या आप अपनी सदस्यता की चिट्ठी हमारी संगति में नहीं लाएंगे? मैं विश्वास करता हूँ कि केवल एक ही चिट्ठी है, वो जब मसीह ने आपके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे, केवल वही एक है, वही चल रही है। जब मैंने सब नामधारी गिरजों को देखा, हमारा प्रस्ताधार आयरिश है जो कि पहले कैथोलिक थे, और मैंने देखा कि वो भ्रष्ट और सड़े हुए थे। मैं यहाँ किसी इस नगर में किसी नामधारी गिरजे में गया, उन्होंने कहा ओ हम ही मार्ग हैं, सच्चाई है, उजियाला है, हमारे पास ये सब है। मैं न्यू एल्बनी में दूसरे वाले के पास गया, ओ वे जो वहाँ थे नहीं जानते थे कि किस विषय पर बात कर रहे हैं। कैथोलिक ने कहा तुम सब गलत हो। मैंने सोचा ओ ऐसी बात है, मैं एक छोटे लूथरन लड़के के साथ खेला था, और मैं सोचता हूँ एक छोटा जर्मन लूथरन। मैं उसके पास गया और मैंने कहा तुम कौन से गिरजे जाते हो? मैं उस वाले गिरजे में जाता हूँ। मैं वहाँ गया और पाया कि उन्होंने कहा कि वे ही मार्ग हैं। और मैं इमैनुअल बैप्टिस्ट में भाई डेल के पास गया था, या पहला बैप्टिस्ट, उन्होंने कहा मार्ग यही है। तब मैं आयरिश गिरजे में गया, उन्होंने कहा परंतु मार्ग यही है। ओ मैं बहुत गड़बड़ में पड़ गया, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूँ, परंतु मैं ठीक होना चाहता था। मैं नहीं जान पाया कि क्या करूं। ओ मैं नहीं जानता था कि प्रायश्चित कैसे करूं। मैंने एक पत्र लिखा, मैंने सोचा, मैंने उसे जंगलों में देखा, मैंने उसे पत्र लिखा, मैंने कहा प्रिय श्रीमान मैं जानता हूं कि आप इस मार्ग से निकले हैं, क्योंकि मैं यहां गिलहरी के शिकार पर बैठा हूं। मैं जानता हूं कि आप यहां आते हैं, और मैं जानता हूं कि आप यहां हैं। मैं आपको चाहता हूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैंने सोचा आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करूं, मैंने किसी को आते नहीं देखा था। मैंने नहीं, मैं उनसे बातें करना चाहता हूँ, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, मैं उनसे बातें करना चाहता हूँ। मैंने सोचा अच्छा, अब मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे करना है, और मैं एक छत के नीचे गया और घुटने टेक दिए। पानी भीगी और पुरानी छोटी कार वहाँ टूटी खड़ी थी, और मैंने कहा मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने एक चित्र देखा है, मैं विश्वास करता हूँ कि वे अपने हाथ इस प्रकार से रखते हैं। और मैं बैठ गया और मैंने कहा अब मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैंने कहा कोई ऐसा तरीका है कि तुझे ये करना है, और मैं नहीं जानता कि मैं जानता हूँ कि हर चीज तक पहुँचने का तरीका होता है, और मैं नहीं जानता। मैंने कहा मैंने अपने हाथ इस प्रकार रखे। मैंने कहा प्रिय श्रीमान, मैं इच्छा करता हूँ कि आप आकर मेरे साथ कुछ क्षण बात करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कितना बुरा हूँ। मैं अपने हाथ इस प्रकार थामे रहा। मैंने सुना, लोगों ने कहा परमेश्वर ने मुझसे बातें की, और मैं जान गया कि उसने बात की, क्योंकि जब मैं बालक था तो मैंने सुना था, बताया था कि शराब और आदि आदि ना पीना। उसने मुझे उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा हो सकता है मुझे अपने हाथ इस प्रकार रखने थे। इसलिए मैंने कहा प्रिय श्रीमान, मैं बिल्कुल सही रीति से नहीं जानता कि ये कैसे करूं, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि आप करेंगे, कि आप मेरी सहायता करेंगे। और प्रत्येक प्रचारक मुझे बता रहा था कि आकर उनके साथ बोलो, और खड़े होकर कहते हैं उन्होंने यीशु मसीह को लिया, और वे यीशु का परमेश्वर का पुत्र होने का विश्वास करते हैं। शैतान भी इसी बात का विश्वास करता है। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इससे कुछ ज्यादा पाना है, इसलिए मैं इस प्रकार से बैठा हुआ था। मैंने पढ़ा जहां पतरस और यूहन्ना उस दरवाजे से निकले जो सुंदर कहलाता था, और वहां एक मनुष्य अपनी माता के गर्भ से ही लंगड़ा था। कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो भी मेरे पास है, मैं जान गया मेरे पास वो नहीं था। इसलिए मैं यत्न कर रहा था कि मालूम करूं कि ये कैसे किया जाए। मैं नहीं जानता था कि कैसे प्रार्थना करते हैं। मैंने अपने हाथ ऐसे किए और तब मैं इस तरह से लेट गया। वास्तव में तब शैतान दृश्य में आया और कहा तुम समझे, तुमने बहुत समय तक प्रतीक्षा की, तुम 20 वर्ष के हो चुके हो, अब ये यत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुमने कर लिया। तब मैं सारा का सारा टूट गया और रोना आरम्भ कर दिया। और तब जब मैं वास्तव में टूट गया तो मैंने कहा मैं बात करने जा रहा हूँ, यदि आप मुझसे बात नहीं करते हैं तो जैसे भी हो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे अपने पर लज्जा आती है। श्रीमान परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि आप कहीं मेरी सुनेंगे, आप मेरी सुनते हैं, और मैं अपने आप से लज्जित हूँ। मैं लज्जित हूँ कि मैंने आपकी उपेक्षा की है। लगभग उस समय मैंने ऊपर देखा और एक अजीब सी अनुभूति ने मुझे घेर लिया। एक यहाँ एक ज्योति कमरे में घूम रही थी, एक इस प्रकार से क्रूस बना दिया, और एक आवाज जिसे मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना बोली। मैंने उसकी ओर देखा, बस चारों ओर ठंडक सी, सुन्न, भयभीत हो गया। मैं हिल नहीं सका, खड़ा हुआ उसकी ओर देखा और वो ज्योति चली गई। मैंने कहा श्रीमान मैं आपकी भाषा नहीं समझ सका। मैंने कहा यदि आप मेरी भाषा नहीं बोल सकते हैं और मैं आपकी नहीं समझ सकता, और यदि आप मुझे क्षमा कर दें, और मैं जानता हूँ कि हिसाब से तो मुझे उस क्रूस पर वहाँ कहीं होना चाहिए था कि मेरे पाप वहाँ होने चाहिए थे, और यदि आप मुझे क्षमा कर देंगे तो केवल वापस आकर और अपनी ही भाषा में बात करें, मैं उसी से ही समझ जाऊंगा यदि आप मेरी भाषा नहीं बोल सकते हैं। मैंने कहा आप केवल उसे वापस आने दें। वो वहाँ फिर से थी, वो कमाल हो गया। तब जब मुझे परम सत्य मिल गया, आमीन। जी हाँ श्रीमान, ऐसा अनुभव हुआ जैसे 40 टन का भार मेरे कंधे से उतर गया और मैं उस लकड़ी के तख्ते पर से होकर निकल गया, यहाँ तक कि जमीन को भी नहीं छुआ। माँ ने कहा बिली तुम अधीर लगते हो। मैंने कहा नहीं माँ, मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। वहाँ पीछे माल ले जाने का मार्ग था, मैं वहाँ माल ले जाने वाले मार्ग पर हवा में कूद रहा था, जितनी जोर से मैं कूद सकता था। मैं नहीं जानता था कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करूं। मैं नहीं जानता था कि कैसे चिल्लाऊं। मैं चिल्ला रहा था परंतु अपने ही तरीके से, आप समझे। ये क्या था, मैंने अपने प्राण का लंगर स्वर्ग के विश्राम में डाल लिया था। बस ये तय हो गया, यही मेरा परम सत्य था। वहाँ तब मुझे कुछ मिल गया, कोई पौराणिक नहीं, कोई विचार नहीं। मैंने मनुष्य से बात की, मैंने उस मनुष्य से बात की जिसने मुझसे कहा था कि कभी शराब ना पीना या धूम्रपान न करना या ऐसा कुछ मत करना जो मुझे भ्रष्ट करे स्त्रियों के द्वारा और आदि आदि, कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरे करने के लिए कोई कार्य होगा। मैंने उससे संबंध स्थापित किया, गिरजे से नहीं, मैंने उससे संबंध बनाया उससे। जी हाँ श्रीमान, वही एक था, एक व्यक्ति की तरह यहाँ गिवनाश या इससे बहुत समय नहीं हुआ बोल रहा था। एकदम प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भाई फंक एक सिपाही होने के नाते वहाँ खड़े हैं। उसने कहा कि वो था, वो थोड़ा सा हास्यपद सा लगता है, ये मजाक करने का स्थान नहीं है, परंतु यहाँ जो उसने कहा वो यहाँ ल्यूअरमनी में था। उसने कहा कप्तान ने हमें बाहर निकाला और कहा सारा राष्ट्र उन सैनिकों के साथ था, कल लड़कों हम वहाँ अंदर जाते हैं, हमें उन्हें लेना है। उसने कहा लड़कों याद रखो, हमें से बहुत से जो आज यहाँ खड़े हैं वे कल वहाँ नहीं होंगे, वे कल यहाँ नहीं होंगे, हम अंदर जा रहे हैं प्रातः दिन के उजियाले में। कहा कि आप प्रत्येक अपने अपने धर्म के लिए चला जाए। इस व्यक्ति ने कहा और मेरे पास तो कोई धर्म नहीं था। और कहा, मैंने कहा, कहा मैं वहीं खड़ा रहा, और वे सब बोला ये पादरी आता है, इस ओर चला गया, प्रोटेस्टेंट इस ओर चले गए, और यहूदी उस ओर चले गए, और कैथोलिक उस ओर चले गए अपने अपने पादरियों के साथ। कहा मैं वहीं खड़ा रहा, और कहा कप्तान ने मुझसे कहा, बोला लड़के अच्छा है, तुम अपने धर्म के लिए चले जाओ। उसने कहा मेरा कोई नहीं है। उसने कहा अच्छा हो कि तुम भी कोई ले लो, क्योंकि मैं निश्चित हूँ तुम्हें भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और कहा उसी समय के लगभग उसने एक झुंड जाते देखा, वे कैथोलिक थे। बोला कि वो वहाँ गया और इस पादरी से बोला, क्या आप मुझे कोई धर्म दे सकते हैं? उसने कहा आ जाओ। कहा वो अंदर गया और उसने मुझे कैथोलिक बनाया, और वहाँ ल्यू एंड बनी में वहाँ एक जॉन हावर्ड था और उनका झुंड रॉयल कैथोलिक वहाँ बैठा है, आप जानते हैं, जब ये व्यक्ति ये बता रहा था। और उसने कहा अगले दिन लड़ाई लड़ने में वो इस विषय में बात कर रहा था, वो ये कैसे था, और कहा वो एक बड़ा महान व्यक्ति था, आप जानते हैं। और कहा वे आमने सामने हो गए और वे चाकुओं से मार रहे थे और चिल्ला रहे थे और काट और एक दूसरे के टुकड़े कर रहे थे। कहा कि पंक्ति टेढ़ी हो गई और वे एक दूसरे के चारों ओर हो गए, साथियों उन्हें इसके अंदर जाने दो, इस प्रकार से। और वे पुरानी बड़ी मशीन गने दोनों ओर से आग उगल रही थी, आमने सामने की लड़ाई थी। कहा मैं प्रत्यक्ष रूप में बहुत देर तक रुका रहा, और कहा हर चीज चिल्ला और चीख रही थी, आप अपने आप को नहीं रूप सुन सकते थे। कहा कि वहाँ लहू था। उसने कहा वो मेरा लहू था। कहा मैंने यहाँ देखा कि मेरी एक और छेद हो गया था, और उसने कहा वो मेरा लहू था। कहा मैं, आप जानते हैं, मैं और एक सही और कैथोलिक मित्र, मैं अब केवल ये एक मनोरंजन के लिए कह रहा हूँ, परंतु एक वास्तविक रॉयल कैथोलिक ने कहा, कहा क्या तुमने कहा मरियम सलाम? उसने कहा नहीं श्रीमान। कहा वो मेरा लहू था, मैं कोई सचिव नहीं चाहता। मैंने कहा मैं व्यक्ति विशेष से बात करना चाहता हूँ। कहा वो मेरा लहू था, जी हाँ श्रीमान, ये इसी प्रकार से चलता है। हमारे पास एक स्थिर स्थान होना चाहिए, एक परम सत्य। मेरे पास उसकी सचिव के लिए समय नहीं था। उसने कहा मैंने उसे बात करनी चाहिए। और भाई यही है, जब एक व्यक्ति मसीह के पास आता है तो आप किस प्रचारक के वचन को नहीं चाहते हैं, किसी सचिव के वचनों को, किसी भी चीज को नहीं चाहते। तुम प्रोटेस्टेंट हो, ये वो या कुछ और मत लो, उस परम सत्य तक आ जाओ जब तक तुम उसमें नए जन्म से लंगर ना डाल लो, फिर से जन्म लेते हुए और पवित्र आत्मा से ना भर जाओ। और आप देखते हैं बाइबल आपके जीवन से नम्रता और प्रेम के द्वारा प्रकट हुई है। ओ तो ये आपका परम सत्य है। जी हाँ श्रीमान, मैं वचन में पढ़ता हूँ जहाँ की वो वचन है। जब जर्मन गिरजे ने कहा वो यही मार्ग है और मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और कैथोलिक, परंतु मैं वचन में पढ़ता हूँ जहाँ उसने कहा इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उसके विरोध में प्रबल ना हो सकेंगे। अब सुनिए अंत में, प्रोटेस्टेंट कहते हैं, अब कैथोलिक कहते हैं उसने ये पत्रस पर बनाया, तू पत्रस है और इस पत्थर पर नहीं, कभी नहीं, यदि वो था तो वो तभी पिछड़ जाता। उन्होंने इसे मनुष्य पर बनाया, उसने क्या किया, उसने ये अपने ऊपर बनाया, नहीं उसने नहीं बनाया, उसने अपने ऊपर नहीं बनाया, उसने क्या किया, क्या होता है, लोग मुझे मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, और कुछ ने कहा तू एलिया और मूसा है, उसने कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो, पत्रस ने कहा तू मसीह है जीवते परमेश्वर का पुत्र। अब वचनों पर ध्यान दें, धन्य है तू शमौन योना के पुत्र, मांस और लहू ने ये तुझ पर प्रकट नहीं किया, तूने ये कभी किसी पादरी से नहीं सीखा, तूने ये कभी किसी धार्मिक विद्यालय से नहीं सीखा, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और इस चट्टान पर वचन का आत्मिक प्रकाशन, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक कभी भी इसके विरोध में प्रबल ना होंगे। मैंने सोचा प्रभु यही है, मैंने यहाँ इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ा 21वें अध्याय 22वें अध्याय जहाँ उसने कहा जो कोई भी, ये पूर्ण चीज है, जो कोई भी इसमें कुछ भी मिलाएगा, जो कोई भी इसमें कुछ भी निकालेगा इसका इनकार करता है, या जो कोई भी इसे थोड़ा अच्छा बनाने का यत्न करेगा आज के लिए सभ्य बनाएगा, जो कोई भी जोड़ेगा या निकालेगा उसका वही भाग जीवन की पुस्तक से निकाल दिया जाएगा। मैंने कहा तब यही है जिसकी आवश्यकता है प्रभु, इसका ही विश्वास करना है, और इसी में वो क्रूस सामने है, मसीह आया। ये हर प्रकार से सिद्ध है, हर वचन जो उसने कभी बोला। इस पुस्तक को इस हाथ में ले और इतिहास इस हाथ में, और अब तक सही सिद्ध प्रमाणित होती है। और मैंने कहा तो फिर प्रभु मुझे स्वीकार करें, और जब मैंने किया तो मैंने मसीह को पाया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर हृदय में, मेरा परम सत्य, ये मैं नहीं था। एक बार मैं बीमार था जब मेरी पत्नी का देहांत हुआ, मेरा बालक चल बसा, ओ पिताजी चल बसे, और मेरा भाई चल बसा, मेरी भाभी चल बसी, और बिली पड़ा हुआ मर रहा था और मैं मरने को था, मैं सड़क पर रोता हुआ जा रहा था, उसकी कब्र पर जा रहा था और उसकी और बच्चे की और बालिका उसकी बाहों में थी, कब्र पर जा रहा था। मैं ऊपर की ओर चढ़ रहा था तो श्री आइसलर, आप जानते हैं, यहाँ आकर खेला करते थे, इंडियाना राज्य के सीनेट, वो सड़क से ऊपर आ रहा था। वो रुका और वो भाग कर आया और अपनी बाहें मेरी चारों ओर डाल दी। ये सन 37 की बाढ़ के बाद की बात थी। उसने कहा, बिली तुम कहाँ जा रहे हो, वहाँ ऊपर? और मैंने कहा हाँ। उसने कहा, तुम वहाँ क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा, मैं एक पुरानी फाख्ता की आवाज़ सुनूंगा। मैंने कहा, मैं वहाँ उसकी और बालिका की कब्र के पास बैठता हूँ, एक पुरानी पंडुकी वहाँ आती है और वो मुझसे बोलती है। ओह, उसने कहा, बिली। मैंने कहा हाँ, मैं पत्तियों की सरसराहट सुनता हूँ, जब वो हिलती हैं तो वो मेरे लिए संगीत बजाती हैं। श्री आइसलर कहा कि किस प्रकार का संगीत बजता है? मैंने कहा, वहाँ नदी के पार एक देश है जिसको वे सदा की मिठास कहते हैं और हम उस किनारे पर केवल विश्वास के विधान द्वारा पहुँचते हैं। एक एक करके हमें प्रवेश मिलता है वहाँ अमरणहार के साथ रहने को। जब एक दिन वे उन सुनहरी घंटियों को बजाएंगे आपके और मेरे लिए। उसने कहा, बिली मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उसने कहा, अब मसीह का अर्थ तुम्हारे लिए क्या है? मसीह का तुम्हारे लिए क्या अर्थ है? मैंने कहा, वो मेरा जीवन, मेरा सब कुछ है, जो कुछ मेरा है वही है श्री आइसलर, वो मेरा अंतिम है, वही सब कुछ है जिसे मैं पकड़े रह सकता हूँ। क्यों? वहाँ कुछ हुआ होगा इस चट्टान पर। कहा कि मैंने तुम्हें यहाँ कोने पर खड़े होकर प्रचार करते हुए देखा था कि तुम ऐसे लगने लगे कि गिरकर मर जाओगे। मैंने तुम्हें रात्रि की हर घड़ी में सड़कों पर आते जाते बीमारों की बुलाहटों पर जाते देखा। और बाद इसके उसने तुम्हारी अपनी पत्नी और तुम्हारी अपनी बच्ची को ले लिया। तुम अब भी उसकी सेवा कर रहे हो? मैंने कहा, यदि वो मुझे मार भी डाले तो भी मैं उसी पर विश्वास करूंगा। क्यों? मेरा लंगर पर्दे के अंदर जड़ित है। मेरे पास एक परम सत्य था। मैं स्वयं को उसके वचन पर स्थिर रखूंगा और उसका वचन थामे हुए था। वो मेरा परम सत्य है। मैंने पाया ये सारी चीजें असफल हो सकती हैं, परंतु मसीह कभी असफल नहीं हो सकता। कैथोलिक गिरजे के पास परम सत्य के लिए पोप है, प्रोटेस्टेंटों के पास उनके बिशप हैं, उनके मत और उनके बड़े बड़े निरीक्षण करने वाले, परंतु मैं पौलुस को पसंद करता हूँ। आपकी पेंसिल है आपके पास? कुछ तय कर लिया है? पौलुस ने कहा, प्रेरितों के काम के 20वें अध्याय 24वें पद में, मुझे इनमें से कोई चीज नहीं हिला सकती। ओ, उनके पास मत हो सकते हैं, आप जो भी चाहें ले सकते हैं, परंतु वे चीजें मुझे नहीं हिला सकती। मैंने अपने प्राण को स्वर्गीय विश्राम में लंगर कर लिया है कि इन भयानक समुद्रों को पार करूं। मैं नहीं जानता कि आप कहाँ हैं, इधर या उधर, और कुछ नहीं। भयानक तूफानी गहराई में परीक्षाएं आ सकती हैं, सब गिर सकते हैं, परंतु यीशु में मैं सर्वदा सुरक्षित हूँ। जी हाँ, इनमें से कोई चीज मुझे नहीं हिला सकती, क्योंकि मैं लंगर पर स्थिर हूँ। ओ, जब से मैं उनसे मिला हूँ, पौलुस ने कहा, इस मार्ग पर मैं एक लंगर से बंध गया। उसने मुझे घुमा दिया, उसने मुझे फिर से आरंभ किया। आपको याद है कि पौलुस भी एक संस्था से संबंधित था, राष्ट्र की सबसे बड़ी, परंतु वो एक परम सत्य से बंध गया। सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे बचाने में उसका कुछ उद्देश्य था, आपको बचाने में उसका उद्देश्य था, और मैं ये करने के लिए उसकी इच्छा द्वारा निर्धारित किया गया था। इसमें मिलाने के लिए नहीं, या इसमें से निकालने के लिए नहीं। प्रकाशित वाक्य 22:19, यदि आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है। जो कोई भी घटाए, मैं पहले से निश्चित हूँ, मैं कलीसिया छोड़ने जा रहा हूँ और आप ये जानते हैं, और इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि केवल इस सुसमाचार के साथ जब तक जीवित हूँ परमेश्वर की सहायता से बना रहूँ। याद रखें, यहाँ अनुग्रह है। लाखों लोग पाप में मर रहे थे जब उसने मुझे बचाया। मैं कौन था जो वो मुझे बचाए? मुझे बचाने में उसका कोई उद्देश्य है और मैं उस उद्देश्य को पूरा करने में दृढ़ संकल्प हूँ। मैं चिंता नहीं करता अब बहुत जल्द ही ये मेरा अंत हो सकता है, परंतु ये जो भी हो, अब मैं विश्वास के स्थान में हूँ, इसे कभी नहीं बदला। श्री आइसलर ने मुझसे उस दिन कहा, सड़क के ऊपर की ओर जाते हुए उसने कहा, बिली इन सब विपत्तियों में तुमने अपने परमेश्वर की भक्ति बनाए रखी? मैंने कहा, नहीं श्रीमान, इसने मुझे बनाए रखा, समझे, मेरे लंगर ने संभाला है। ये ठीक बात है, मैंने इसे कभी नहीं बनाए रखा, इसने मुझे संभाला है। मैं इसे संभाले नहीं रह सकता, मेरे लिए ऐसा करने का कोई मार्ग नहीं है, परंतु इसने मुझे संभाला है, यही बात है। मुझे बचाने में उसका उद्देश्य था। जब मैं उसके पास आ गया तो लाखों लोग पाप में मर रहे थे, परंतु उसने मुझे बचाया, ऐसा करने में उसका उद्देश्य था। मसीह की मृत्यु इससे डरने के लिए परम सत्य थी। मसीह की मृत्यु ने प्रश्नों का उत्तर देकर दिया। जब मृत्यु के कीट ने उसके डंक मारा और वो डंक गड़ा दिया, आप जानते हैं, एक कीट जिसके डंक होता है, यदि ये डंक कभी अधिक गहराई में गड़ाया गया तो वो अपने में से उस डंक को ही बाहर निकाल देता है। मृत्यु के सदा से डंक था, मृत्यु के सदा डंक था। और एक दिन जब वो वहाँ कैलवरी पर जा रहा था और उन पत्थरों में से खचोड़ते हुए लहू पत्थरों पर छलक रहा था, जब वो कैलवरी की धूल पर गुलगोता जाते हुए पड़ा, उस कैलवरी की पिछाड़ी उन नम्र लहू लुहान पत्थरों को खींच रही थी। दुर्बल शरीर वहाँ चलता हुआ जा रहा था, वे कोड़े और उसका कुचलना जैसे जैसे वो पहाड़ी पर जा रहा था। परंतु उसके पास एक परम सत्य था, वो जानता था कि वो कहाँ खड़ा था, क्योंकि दाऊद के द्वारा परमेश्वर के वचन ने कहा, मैं अपने पवित्र जन को सड़ने ना दूंगा, ना ही उसके प्राण को अधलोक में छोड़ूंगा। वो जानता था कि 72 घंटों में चढ़ाहट आरंभ हो जाती है। उसने कहा, इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। उसके पास परम सत्य था। वहाँ वो पहाड़ी पर ककारों की उपहास के साथ, पियकर सिपाहियों के थूक के साथ जा रहा था, जिन्होंने उसके मुंह पर कपड़ा डालकर और उसे सर पर मारा और कहा, तू भविष्यद्वक्ता है तो हमें बता, तुझे किसने मारा। वो वहाँ उस पहाड़ी पर लज्जा और अपमान के साथ जा रहा था कि उसके वस्त्र उस पर से फाड़ दिए गए थे। लज्जा को तुच्छ करते हुए रूस पर लोगों के सामने नंगा लटका है। रोम के कलंक, सरकार की फांसी की सजा के अधीन एक मनुष्य जिसने कुछ नहीं किया। एक छोटी कहानी एक समय की, कहा कि मरियम मग्दलीनी भाग कर गई और बोली, इसने क्या किया है, तुम्हारे बीमारों को चंगा किया, मृतकों को जीवित किया और उनके लिए छुटकारा लाया जो बंधनों में थे, इसने क्या किया है। और एक याजक ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा जब तक लहू ना निकल आया और कहा, क्या तुम इस महिला की सुनोगे या अपने महायाजक की। ओ उन नामधारियों गिरजों का संसार, इसका सबका सब श्रापित है। यही बात है, वो यही है। और वो इसे ले गए, परंतु वो पहाड़ी पर लड़खड़ाता हुआ गया। शैतान को हमेशा इस पर शंका रही, वो प्राणी कौन था। कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बना दे। तू दावा करता है कि तू आश्चर्य कर्म करता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह कि रोटियां बन जाएं। वही पुराना शैतान आज जीवित है, ये ठीक बात है। यदि तू दिव्य चंगाई देने वाला है, यहाँ बूढ़ा जॉन फला फला कोने में बैठा हुआ है, मैं जानता हूँ कि वो लंगड़ा है, उसे चंगा कर। क्या तुम नहीं जानते कि ये वही पुराना शैतान है। यीशु ने कहा, मैं केवल करता हूँ। देखिए, वो बैतसैदा के कुंड के पास गया और जहाँ पर हजारों पड़े हुए थे, लंगड़े अंधे पड़े हुए थे और सूखे अंग वाले, एक और वो एक मनुष्य के पास गया जो चल सकता था, वो चारों ओर घूम सकता था, हो सकता उसको प्रोस्टेट की बीमारी थी, वो जो कुछ भी था वो शिथिल हो चुका था, उसे ये 38 वर्षों से था। उसने कहा, जब मैं कुंड के पास आता हूँ कोई मुझसे पहले पहुँच जाता है, वो चल सकता था। उन सबको वहाँ पड़ा छोड़ दिया और केवल उसी के पास गया और उसे चंगा कर दिया। क्यों? उसने कहा, वो जानता था कि वो दशा में है। तब उन्होंने उससे कहा, उससे प्रश्न किया, जब उन्होंने उसे पाया, संतीय होना 5, उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जो भी वो पिता को करते देखता है, यही उसका परम सत्य है। अब भी यही परम सत्य है। उस दिन वहाँ फिनलैंड में खड़े हुए और वो छोटा लड़का वहाँ पड़ा हुआ था और मैं उसके चारों ओर घूमा, वो वहाँ मृत पड़ा था, आधा घंटे से मृत पड़ा था। आप पुस्तक में पढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ने के लिए चल पड़ा, किसी चीज ने अपने हाथ रखे, मैं पीछे घूमा, मैंने सोचा ये क्या था, और मैंने फिर से देखा, मैंने सोचा एक मिनट प्रतीक्षा करूंगा, बाइबल के पिछले पन्नों पर देखा और ऐसा घटित होगा, एक छोटा लड़का लगभग 9 वर्ष का, वो एक वाहन के द्वारा मारा जाएगा। वहाँ पर मोर पंखी के वृक्षों की एक लंबी कतार होगी, चट्टानों का किनारा वहाँ है, कार सड़क के पार पड़ी होगी टूटी हुई, उसने छोटे मोटे पहन रखे होंगे, लंबे वाले घड़े के आकार के बाल कटे हुए और उसकी छोटी आंखें पलटी हुई होंगी, उसके शरीर की हड्डियाँ टूटी हुई होंगी। मैंने देखा, मैंने सोचा, ओ परमेश्वर, मैंने कहा, आप सब शांत खड़े हो जाएं। नगर का मेयर वहीं था। मैंने कहा, यदि ये लड़का अब से 2 मिनट में अपने पैरों पर ना खड़ा हो जाए तो मैं झूठा भविष्य देखता हूँ, तो निश्चय ही मुझे बिठाकर फिनलैंड से भगा देना, परंतु यदि वो हो जाए तो तुम्हारे जीवन मसीह के लिए हूँ, ये ठीक बात है। वे शांत खड़े हो गए। मैंने कहा, स्वर्गीय पिता, 2 वर्ष पहले समुन्द्र के पार आपने कहा था कि छोटा लड़का यहाँ पड़ा होगा, वहाँ भाई मूर और भाई लिंड से थे और वे इसकी ओर देख रहे थे और चारों ओर, और उन्होंने इसे बाइबल में लिख रखा होगा और हजारों बाइबलों में सारे देश में ये लिखा हुआ था। ये क्या था? एक परम सत्य। पिता ने दिखा दिया था कि क्या घटित होगा, वहाँ खड़े हुए कोई भय नहीं था, परम सत्य, निश्चय ही वो उठेगा। बिल्कुल वही फिनलैंड में, जहाँ हजारों लोग रात्रि में आते हैं और यहाँ तक कि उन्हें बाहर जाना पड़ता था और कि वे बैठने पाए, उन्हें बाहर करके और किसी दूसरे को अंदर बैठने दें, वहाँ वो साथ खड़ा था। ये सब लोगों ने मुझसे प्रेम किया और उन्होंने चंगाई होती देखी, परंतु वहाँ एक लड़का मृत पड़ा है। परम सत्य क्या था? वो दर्शन। मैं वही करता हूँ जो पिता करने को कहता है, वो जो मुझ में विश्वास करता है वे कार्य जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, यही आपका परम सत्य है। मैंने कहा, मृत्यु तू इसे अधिक देर तक रोके नहीं रह सकती। परमेश्वर ने कह दिया है वापस आ, उसे वापस दे। और वो छोटा लड़का उठ के खड़ा हुआ और इस प्रकार से चारों ओर देखा, लोग मूर्छित हो गए और आदि आदि। वो यही था, वही लिखा गया और नगर के मेयर के द्वारा हस्ताक्षर किए गए, नोटरी के द्वारा। ये ठीक बात है। ये क्या है? एक परम सत्य यीशु मसीह कल आज और सदा तक एक सा है। क्या ये वही परमेश्वर नहीं है जिसने नाइन गांव की स्त्री को रोक दिया, स्त्री को उसके पुत्र के साथ? उन दिनों में जब कोई मर जाया करता था, वे उसे जल्द ही कब्र में रख दिया करते थे। वे उन्हें उसे बाहर नहीं रखने दिया करते थे, वे उन्हें कब्र में डाल देते थे। वहाँ वही यीशु मसीह कल आज और सर्वदा। जी हाँ, वहाँ मेक्सिको में देखिए, जब वो छोटा बालक, आप में से कुछ यहाँ हैं जो यहाँ बैठे हैं, और वो बालक, डॉक्टर ने एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं, ये क्रिश्चियन बिजनेसमैन में लिखा हुआ है कि वो बालक उस प्रातः 9 बजे मृत हो गया था और उस समय उस रात्रि के 10 बज रहे थे, और वो छोटी स्त्री शांत नहीं होगी। मेरा पुत्र बिली वहाँ खड़ा है, उसे पीछे हटाने का यत्न कर रहा था, और उसने, ठीक है, मेरा अनुमान है उसके पास 200 भेंट करने वाले वहाँ खड़े थे, और वो उनके ऊपर चढ़ गई। उस रात्रि से पहले रात्रि में उस अंधे व्यक्ति ने अपनी दृष्टि पाई थी, और वो जानती थी वो कैथोलिक थी, परंतु अंततः मैंने कहा, भाई मुड़ जाइए और उसके लिए प्रार्थना कीजिए। उस बालक के कारण वर्षा पड़ रही थी, वे वहाँ उस प्रातः तड़के से खड़े थे वहाँ बड़े सांड की लड़ाई के मैदान में, और मैंने कहा मुझे रस्सियों के पीछे उस स्थान में जाने दें। वहाँ 3 रात्रियों से था मैं वहाँ खड़ा हुआ, और मैंने कहा, जैसे ही मैं कह रहा था, प्रचार कर रहा था, और मैंने देखा एक छोटा बालक मेरे सामने है, एक छोटा मेक्सिकन बालक बिना दांत का वहाँ बस बैठे मुझ पर हंस रहा है, यही बिल्कुल सामने। मैंने कहा, भाई मूर, एक मिनट प्रतीक्षा करें, उसे यहाँ ले आए। ओ परम सत्य, भेंट कराने वालों ने रास्ता बनाया, वो यहाँ आई, वो गिर पड़ी और बोली, पादरी पादरी। मैंने कहा, खड़ी हो जाइए, और भाई एस्पिनोजा ने कहा, खड़ी हो जाइए, और उन्होंने उसे स्पेनिश में कहा, वो वहाँ खड़ी हो गई। मैंने कहा, स्वर्गीय पिता, मैं यहाँ इस वर्षा में खड़ा हूँ। एक सुंदर छोटी स्त्री, लगभग 23 वर्ष की, कुछ इसी तरह की, उसके बाल लटक रहे थे, उसका छोटा सा मुख ऊपर की ओर इस प्रकार से देख रहा था कि उसकी आंखों में आशा थी। उसने उस अंधे मनुष्य को देखा होगा जो लगभग पिछले 40 वर्ष से अंधा होगा। मंच पर उसकी आंखें खुल गई थी, वो जानती थी कि यदि परमेश्वर अंधी आंखों को खोल सकता है तो वो उसके बालक को चंगा कर सकता है। वहाँ वो छोटी बालिका कंबल के अंदर इस प्रकार से अंदर अकड़ी पड़ी थी और वो भीग गई थी। वो वहाँ प्रातः सही खड़ी थी और दोपहर बाद भी, उस समय वहाँ 10 बजे थे उस रात्रि के, कुछ ऐसे ही वो बालक को पकड़ी हुई थी। आपने क्रिश्चियन बिजनेसमैन में लेख देखा होगा, वहाँ वो बालक को इस प्रकार पकड़े हुई थी। मैंने कहा, स्वर्गीय पिता, मैं नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है, मैं बस आपका सेवक हूँ, परंतु मैंने देखा है कि वो बालक मेरे सामने खड़ा है, वो जीवित था। मैं अपने हाथ पर प्रभु यीशु के नाम से रखता हूँ। बोला, वो चिल्लाने लगा, माँ ने बच्चे को पकड़ा, चिल्लाने लगी, और लोग यहाँ से चिल्लाने लगे, और स्त्रियाँ बेहोश हो गईं, और आदि आदि। मैंने कहा, आप इस विषय में कुछ मत कहना, उस माँ और बालक के साथ किसी को भेजो और उस डॉक्टर के पास जाकर और उससे इस बयान पर हस्ताक्षर कराओ कि बालक मृत था, वो निमोनिया से एक प्रातः पहले या उस प्रातः 9 बजे मृत हुआ था, और हमें डॉक्टर द्वारा हस्ताक्षर युक्त बयान मिल गया। बालक उस प्रातः डॉक्टर के कार्य स्थल में मृत घोषित किया गया, और माँ उसे पूरे दिन लपेटी रही। ये क्या था? एक परम सत्य। वो क्या था? उसने विश्वास किया, यदि परमेश्वर अंधी आंखों को खोल सकता है तो क्यों नहीं परमेश्वर मरे हुओं को जिला सकता है, क्योंकि वो तो कल आज और सदा तक एक सा है। मैं सुनिश्चित नहीं था जब तक मैंने नहीं देखा, नहीं जानता था, और जब मैंने बालक को देखा तो वो एक परम सत्य था। बिल्कुल सही, वहाँ ये था, मृत्यु को अपना शिकार छोड़ना पड़ा। यहाँ परमेश्वर का पुत्र गया, मृत्यु की वो मक्षिका उसके चारों ओर भिनभिनाने लगी। वो कैसे एक भविष्यद्वक्ता हो सकता है, कैसे वो खड़ा रह सकता है और अपने मुख पर थूकने दे, कैसे वो खड़ा रहकर उन्हें अपना उपहास करने दे और इस विषय में कुछ न कहे। ये इमैनुअल नहीं है, ये केवल एक साधारण मनुष्य है। सभ्य शराबियों को देखें, पिए हुए सिपाहियों में से उसके मुख की ओर देखें, लहू बह रहा है। शैतान ने कहा, मैं इसे ले लूंगा। यहाँ वो एक मधुमक्खी की तरह आता है, मृत्यु का डंक उसके चारों ओर भनभना रहा है। परंतु भाइयों, जब उस मधुमक्खी ने कभी भी अपना डंक उस इमैनुअल में घुसाया, जब उसने वापस निकाला, वो अपना डंक खो बैठा, यहाँ तक कि स्वयं मृत्यु। कोई आश्चर्य नहीं, बाद में पौलुस उसके मुख की ओर देखकर कहता है, ओ मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? कब्र, तेरी विजय कहाँ रही? परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें विजय दी है। मसीह की मृत्यु हर व्यक्ति के लिए जो इससे डरता है परम सत्य था। मेरा हृदय आमीन कहता है उसकी पुस्तक के प्रत्येक वचन पर। अब मैं निश्चय बंद कर रहा हूँ, मुझे इसे छोड़ना था, समझे। इसलिए मैं जानता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरा कुतुब नुमा है जो मेरा मार्गदर्शन करता है। वही है जो मुझे ये बताता है कि ये वचन सत्य है। वो मेरा परम सत्य है। वो मेरा सूर्य का उजाला है। वो मेरा जीवन है। वो मेरा लंगर है। जब संकट आते हैं तो वो मेरा ध्रुव तारा है। जब मैं भटक जाता हूँ, पवित्र आत्मा मेरा कुतुब नमा होता है जो मुझे वापस उस स्थान पर मेरा मार्गदर्शन करता है। नामधारी गिरजे दूसरे सितारों के समान हैं। वे संसार के साथ बदलते हैं जैसे जैसे संसार बदलता है, परंतु उत्तर का तारा नहीं। संसार चाहे स्थान बदल सकता है, परंतु ये स्थिर रहता है। भाई ओह, ध्रुव तारा लंगर हो गया। दूसरे इधर उधर हट जाते हैं, आप उन्हें इधर उधर देख सकते हैं और कहीं भी। नामधारी गिरजों के साथ यही है, परंतु मसीह परम सत्य है। वही है जिसमें आप विश्वास कर सकते हैं। जब नामधारी गिरजे आपको दिशा भ्रमक कर दें, तो केवल उत्तर के तारे को देखें। पवित्र आत्मा आपका कुतुब नुमा है। वो सदा अपने वचन के प्रति सत्य रहा है। जब उन्होंने बताया कि ये बातें आज के आधुनिक दिनों में घटित नहीं हो सकती, मैं जानता था यदि कोई परमेश्वर नहीं है तो फिर जियो, खाओ पियो और आनंदित हो जाओ। यदि परमेश्वर है तो हम उसकी सेवा करें। और मुझे इस दिन को देखने के लिए जीवित रहना पड़ा कि उसने प्रत्येक कार्य को किया, यहाँ तक कि उसने वैसे ही मृतकों को जिला दिया जब वो इस पृथ्वी पर था। और हम इन कागजों के बयानों के द्वारा जानते हैं कि ये सत्य है। जी हाँ श्रीमान, वो मेरा परम सत्य है। अब आप इसे अपना परम सत्य बना लें। मेरे संकट के समय वो सदा मेरा परम सत्य है। अब देखिए, अब परमेश्वर के अनुग्रह से देखिए। अब अच्छा हो कि मैं समाप्त कर दूं, देर हो गई है। अच्छा इधर देखिए, मैंने सोचा 11 बज रहे हैं, ये तो 12:30 हैं। मित्रों, सारे दिन, सारी रात, सारे वर्ष और सारी अनंतता में होते हुए भी इस पर कभी भी नहीं बोला जा सकता। आप इसका आंकलन ना करें, करने का यत्न ना करें। इसका आंकलन करने का कोई तरीका नहीं है। आप कहते हैं भाई ब्रणम, यदि आप, मैं नहीं जानता, मैं केवल विश्वास करता हूँ। मैं इसकी कोशिश नहीं करता, बस विश्वास करता हूँ, समझे। वो नहीं जो दौड़ने वाला है या चाहने वाला है, ये परमेश्वर है जो अनुग्रह प्रकट करता है, समझे। ये कामों के द्वारा नहीं है, ये अनुग्रह के द्वारा है, समझे। मैं केवल इसका विश्वास करता हूँ, परमेश्वर का। ये उस पर निर्भर करता है कि बाकी वो करे। केवल इसका विश्वास करें, उसका पालन करें। ये प्रसिद्ध गीत मैंने उन्हें इसे बजाते सुना, इसे यहाँ गाएं या कहीं और। ओ परमेश्वर का प्रेम कैसा धनी और पवित्र, कितना समझ से परे और शक्तिशाली। ये सदा सदा तक ठहरेगा। संतों और दूतों का गीत। जब एक व्यक्ति गणित में तोड़ने का यत्न करता है या आपको अपनी शिक्षा से दिखाने का यत्न करता है, तो ये आपको पागल कर देगा। आप ये नहीं कर सकते। इसे करने का यत्न मत कीजिए। इसे कोई रूप देने का यत्न मत कीजिए। परमेश्वर का बीता हुआ निर्धारित करना। आप परमेश्वर की कोई छाया मत बनाइए, कोई तस्वीर मत बनाइए। आप केवल परमेश्वर में विश्वास कीजिए। यही भेद है। इसे निर्धारित रूप में मत होने दीजिए। इसका केवल विश्वास कीजिए। इसका क्या अर्थ है मैं आपको नहीं बता सकता। ये कैसे करना है मैं आपको नहीं बता सकता। मैं बस जानता हूँ, मैं केवल इसका विश्वास करता हूँ, बस इतना ही है। जैसे कि आप किसी छोटे बच्चे से किसी चीज की प्रतिज्ञा कर दें, वो विश्वास करता है। आपको अपने वचन का पालन करना चाहिए। आप परमेश्वर के बालक हैं, वो अपने वचन को पूरा करता है। केवल सादगी से विश्वास कीजिए, बहकिए नहीं, बस उसी पर स्थिर रहिए। परमेश्वर एक बार किया है, उसे ये फिर से करना है। यदि वो नहीं करता तो वो आपको बताएगा कि क्यों ये नहीं कर सकता। और ये ठीक बात है। अब केवल इस पर स्थिर रहिए। आप जानते हैं एक पद है, मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा बहुमूल्य भाई वहाँ उपस्थित है। पिछली रात्रि उसका बपतिस्मा हुआ था। वो वाला गाना गाता है, ओ परमेश्वर का प्रेम। वे मुझे बताते हैं कि ये वाला पद, इसका ये भाग एक पागल खाने की दीवार पर लिखा हुआ देखा गया। जब ये कहा, यदि समुद्र को हम स्याही से भर दें या आकाश कागज का बना हुआ होता और पृथ्वी का हर तिनका एक लेखनी और प्रत्येक व्यक्ति लिखने का कार्य करने वाला होता कि ऊंचे पर परमेश्वर का प्रेम लिखे तो समुद्र सूख जाता या आकाश रूपी कागज सबको अपने पर समा लेता, यद्यपि आकाश से आकाश तक फैला है। इस पर विचार करें, जबकि लगभग पृथ्वी का 3/4 पानी है और वायु की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखें, वो आर्द्रता और आदि आदि चीजें, समझे। यदि सारी नमी स्याही होती और उन करोड़ों अरबों खरबों और खरबों तिनकों को जो कि कलम होते, और सोचे कि अरबों व्यक्ति जो कि पृथ्वी पर होते और उनमें से प्रत्येक अपने पेशे से लेखक होता, वे उन लेखनियों को सागर में डुबाकर और परमेश्वर के प्रेम को लिखकर हिसाब लगाने का यत्न करते तो ये सागर समाप्त होकर सूख जाता। या कागज इस सारी अनंतता से अनंत तक यद्यपि फैला हुआ होता, इसका हिसाब लगाकर आकार ना बनाए। आप नहीं कर सकते ऐसा हिसाब लगाने के यत्न में आप अपना मस्तिष्क गंवा बैठेंगे। केवल विश्वास करें, उसे अपना परम सत्य बना लें, वहीं स्थिर रहिए। वो मिठास वाली शांति और वो अनुभव जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे, उसी पर स्थिर रहिए और आपका लंगर पर्दे के भीतर होगा। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। तू कितना महान, तू कितना महान। आप में से कितने हैं जो यहाँ प्रातः अपने सरों को झुकाए हुए जब नया वर्ष आ रहा है, और आप बहुत ही धार्मिक रहे हैं और ये अच्छी बात है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। आप में से प्रत्येक, मैं निश्चित हूँ परमेश्वर करता है, परंतु आपके पास परम सत्य का अनुभव नहीं था। वो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने विश्वास नहीं किया। आप केवल कल्पना न कीजिए, परंतु कुछ आपसे बोला है और तब आपने देखा कि आपका जीवन उस समय से बदल गया और परमेश्वर का हरेक वचन और प्रतिज्ञा आमीन से पूर्ण विराम लगाती है, तो आप परम सत्य को पकड़े हुए हैं। क्योंकि आप याद करते हैं, उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। आप अभी उस स्थान पर नहीं पहुँचे हैं जहाँ की आप उसके हर वचन पर आमीन कह सकें। यदि ये आपके मत के विरुद्ध है, आपके नामधारी गिरजे के विरुद्ध था, परंतु आप उस स्थान तक मूसा की तरह आना चाहते हैं और बाकी लोगों की तरह, वे ये नहीं कर सकते थे जब तक वे उस परम सत्य को नहीं पकड़ लेते। और इस प्रातः आप इसे अपने जीवन में चाहते हैं, क्या आप इसे परमेश्वर की ओर अपना हाथ उठाकर प्रकट करेंगे? परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है श्रीमान, सारे के सारे भवन में अनुग्रहकारी पिता, मैं जानता हूँ किसी समय हमें अलग होना है। एक समय है तब जब हमें ये संसार छोड़ने जा रहे हैं। हम नहीं जानते कि ये किस समय होगा और इससे बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ेगा। यदि हमारा समय समाप्त हो चुका है तो हम आना चाहते हैं। यहाँ रहने का हमारा उद्देश्य आपकी सेवा करना है, और एक दिन जब से इस नष्ट होने वाले मार्ग पर, जैसे पौलुस दमिश्क की राह पर कलीसियाओं के व्यापक विनाश के लिए था, एक ज्योति ने उसे अंधा कर दिया। ओ परमेश्वर, वो ज्योति उसके संग संग चली क्योंकि वो मसीह था, और वो वहाँ एक परम सत्य पर स्थिर हो गया, यहाँ तक कि स्वयं मृत्यु वो उसके मुख पर हंस सकता था और कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें यीशु मसीह के द्वारा जीवंत करता है। प्रभु, आप उस प्रेरित के लिए पूर्णतः परम सत्य हो जाते हैं। वो था उसके लिए प्रत्येक वाक्य में आप आमीन थे। आप उसके जीवन का तारा थे, मार्गदर्शक चिन्ह। आप कुतुबनुमा थे जो तूफानों से निकलने में उसका मार्गदर्शन करता था। आप प्रकाशन थे, आप दर्शन थे, आप उसकी उद्धार की आशा थे, और यहाँ तक कि मृत्यु की छड़ी में जब वो जान गया कि वो इसके समीप जा रहा है, आप तब भी उसका परम सत्य थे। आप डेनियल का परम सत्य थे, आप सब भविष्यवक्ताओं का परम सत्य थे। नामधारी गिरजों की भिन्नताओं के बीच और उनकी विपत्तियों के दिनों में और फरीसियों और सदूकियों, जबकि वहाँ कुछ व्यक्ति थे जो आपको अपने परम सत्य के लिए ले गए, और आज प्रभु पुरुष और स्त्रियाँ उसकी अनुकंपा के साथ, प्रेम के साथ, और प्रभु वे हृदय से रो रहे हैं उस वास्तविक अनुभव के लिए कि परमेश्वर को जाने और एक आश्वासन परम सत्य को पाने के लिए। प्रभु, हो सकता है बहुत से लोग इसे पहले कभी जानते हों, गिरजे के सदस्य बनना था, और हम अनुभव करते हैं जैसे कि हमने निष्कपटता से यत्न किया है, भिन्नता के लिए नहीं, आप मेरे हृदय को जानते हैं, परंतु आपने उन्हें बता दिया है कि कलीसिया के सदस्य नहीं बन सकते, आप अस्थाई निवास के सदस्य हैं, मेथोडिस्ट और बैप्टिस्ट और कैथोलिक और पेंटेकोस्टल के अस्थाई निवास, परंतु आपने एक कलीसिया में जन्म लिया है मसीह की रहस्यमयी देह में, और उसकी देह के सदस्य पवित्र आत्मा के वरदानों के साथ हो जाते हैं कि उसकी महान देह कार्य और सामर्थ्य में चले। परमेश्वर इस प्रातः जो ये हाथ ऊपर उठे हैं, इनका यही अर्थ है, ओ प्रभु मुझे स्थान दें, मुझे लें, मुझे ढालें, मुझे बनाएं, केवल मेरा स्थान मेरे जीवन में एक परम सत्य जो मसीह से बंधा हो बनाए कि मैं और कुछ नहीं सोचूंगा, केवल वही परम सत्य। प्रभु इसे प्रदान करें, इन्हें आशीष दें, बीमारों और अपाहिजों को चंगा करें, खोए हुओं को बचाएं। प्रभु अब हम जानते हैं कि लोगों को ऑल्टर पर बुलाना रीति है, परंतु ये हमारे लिए रिवाज है, और इस प्रातः इस भरे हुए ऑल्टर और ये छोटे छोटे बालक और ये सब, परंतु प्रभु जो भी है आप उनसे बोले हैं, उन्होंने अपने हाथ उठाए हैं जैसा कि इन्होंने निर्णय लिया था। वे चाहते हैं, वे कुछ वास्तविक चाहते हैं, और मैं अपनी प्रार्थना उनकी ओर से समर्पित कर रहा हूँ। इनमें से प्रत्येक को प्रदान करें प्रभु, अब हमारे साथ हों, हमारे पापों को क्षमा कर रहे हैं, हमारी बीमारियों को चंगा कर रहे हैं, और वो छुटकारा जिसकी हमें आवश्यकता है दे रहे हैं। और प्रभु सब बातों के ऊपर होने दें कि आज हम ये ना भूलें कि हम अपने परम सत्य पर स्थिर हो गए हैं, हमारा उत्तर का तारा उस कैलवरी उस मसीह में, और पवित्र आत्मा परमेश्वर के उन वचनों को ले रहा है और हम पर उन्हें अविकल में प्रकट कर रहा है, बीमारों को चंगा करने के द्वारा, हमें दर्शन दिखाने के द्वारा, मृतकों को जीवित करने के द्वारा, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे उसने करने की प्रतिज्ञा की है। और होने दें ये कलीसिया और ये लोग मसीह की देह के भाग जो कि आज प्रातः यहाँ जमा हुए हैं, जैसा कि यीशु ने कहा है, रहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, और होने दें कि वे इतने नमकीन हो जाएं जब तक कि उनका समाज प्यासा ना हो जाए। नमक प्यास उत्पन्न करता है, और केवल नमक ही इसे बचा सकता है जैसे ही ये स्पर्श करता है। और परमेश्वर मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप ये लोगों को प्रदान करें कि वे भी प्राणों को जीतने वाले हो सकें। हमारे पास्टर को आशीष दें, भाई नेविल को, प्रभु का ये नम्र दास जो अपने कर्तव्य के स्थान पर है, ऐसे ही सम्मानित जैसे मसीह की देह, अपने पूरे यत्न से हर बात का पालन करें जो आप उससे करने को कहें। ट्रस्टियों को आशीष दें, वो मनुष्य जो मेरे साथ नम्र भाव से खड़े रहे इस महान अंधकार के समय जिसमें से कि मैं निकला, कलीसिया के साथ खड़े रहें जिन्होंने मेरे साथ प्रार्थना की और मेरे साथ संकट के समय खड़े रहे। प्रभु मैं उनसे प्रेम करता हूँ और मैं अपनी प्रार्थना समर्पित करता हूँ कि वे आपको देखेंगे। प्रभु होने दें कि इस नाशमान मट्टी के दास से दृष्टि हटाकर आगे देखें, होने दें कि वे उसे देखें जो सर्वशक्तिमान है, जो, और प्रभु हम जानते हैं कि हम सीमित हैं, इससे कोई मतलब नहीं कि हम कौन हैं, हम अब तक मरणहार हैं, संदेश वाहक नहीं केवल संदेश प्रभु से ग्रहण करें। यही जहां पर हम यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र की ओर संकेत करते हैं, इसे प्रदान करें। आज यहां वो प्रत्येक के लिए यथार्थ है, यहां तक कि छोटे बालकों के लिए भी, कि वो सारी सभा के लिए परम सत्य हो जाएगा। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब जब हम इसे फिर से गा रहे हैं, अपने सामने वाले से हाथ मिलाएं, अपने पीछे वाले से, बराबर वाले से, अब सब हाथ मिलाएं, बस बैठे रहें, केवल चारों ओर घूमकर, यदि आप घूम सकते हैं तो हाथ मिलाएं, समझे। उन्होंने सोमवार आधी रात्रि को प्रभु भोज की घोषणा की है। आइए हम अपने हाथ उठाकर उसके लिए गाएं। आप में से कितने अनुभव करते हैं कि वो आपका परम सत्य है? वचन, वो वचन है, क्या आप इसका विश्वास करते हैं? वो वचन है और वो पवित्र आत्मा उसने वचन को अंकुरित किया है कि वचन का उजियाला हो, कि वो आप में रह सके। वचन की पुष्टि आपके हृदय में वचन डालता है। पवित्र आत्मा को अंदर आने दें और वचन को कार्य करने दीजिए। विश्वास करें, नम्र हों, कुछ महान बनने का यत्न ना करें, कुछ भी ना बने ताकि परमेश्वर आपको कुछ बना सके। समझे? ये ठीक बात है। अब इसे करिए। हर कोई जो उससे प्रेम करता है आमीन कहे। आप जानते हैं कि आमीन का क्या अर्थ होता है? ऐसा ही हो, ये ठीक है। आइए हम कहें हालेलुया। आप जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है? हमारे परमेश्वर की महिमा हो। बहुत समय नहीं हुआ कि मैं जर्मनी में था, उस दिन मैं लगभग 30 या 40 हजार लोगों के सामने खड़ा हुआ था और मैंने कहा ये एक आश्चर्यजनक बात है कि आप जर्मन के लोग नहीं समझ सकते। मैंने कहा आज यहाँ आते हुए एक कुत्ता मुझ पर अंग्रेजी में भौंका, ये ठीक बात है। मैंने कहा मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी। और वहाँ एक चिड़िया बैठी थी और उसने मेरे लिए अंग्रेजी में गाना गाया। मैं सड़क पर आया, एक माँ की गोद में एक छोटा बालक था। जब मैं वहाँ उसकी पीछे की ओर आया और मैंने कहा तो वो बालक अंग्रेजी में रो रहा था। लोगों तुम्हारे साथ क्या मामला है? ये ठीक बात है। ओ यदि आप चारों ओर घूमकर देखें तो वो हर स्थान में है, क्या वो नहीं है? निश्चय निश्चय ही वो है। अब आइए हम जरा अपने हाथों को ऊपर उठाकर और आंखें बंद कर कर और गाएं, जबकि हम पास्टर से कहें कि वो आकर हमें विसर्जित करे। आइए प्रत्येक, हम सब अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अब क्या आप फिर से उससे प्रेम करते हैं? तो आमीन कहें। और आप जानते हैं कि हालेलुया शब्द का अर्थ हर बोलचाल की भाषा में एक ही है। आप अफ्रीका की जंगली जातियों में जाएं, हालेलुया वही शब्द है, हालेलुया। इसे मसीहों का अभिवादन होना चाहिए ना? हालेलुया। इस शब्द का अर्थ है हमारे परमेश्वर की महिमा हो और वो इसके योग्य है कि नहीं? वो पूर्णतः मेरा उद्धार करता है। यीशु मसीह बिल्कुल वही है, मेरे लिए परमेश्वर का पुत्र। वो मेरे लिए कल आज और सर्वदा बिल्कुल एक सा है। क्या वो आपके लिए भी वैसा ही है?